ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का बहुत सुंदर मौसम भी है, तो लगता है कि अंदर आकर के बैठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाहर बहुत सुंदर लग रहा है। 19th सर कॉन्फ्रेंस एंड मेडिटेशन रिट्रीट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इनोवेटिंग न्यूर एवेन्यूज। इस कॉन्फ्रेंस के वैलिडिटी सेशन में हम सभी पहुंचे हुए हैं, और वैलिडिटी सेशन इस सेशन का बहुत सुंदर टॉपिक लेके आ रहे हैं, इनवोकिंग डॉन ऑफ अ न्यू एरा बाय एक्सप्लोरिंग इट्स सीड्स इन द प्रेजेंट टाइम। क्योंकि कहीं धर्मों में कई लोग ये कहते हैं प्रलय होगा, कयामत होगी, डूम्सडे होगी, तो वो अंत है संसार का। लेकिन हम सभी समझते हैं कि एवरीथिंग इज साइक्लिक, दिस टाइम साइकिल, टाइम इज ऑल्सो साइक्लिक। आफ्टर दिस आयन एज्ड वर्ल्ड द गोल्डन डॉन हैज टू कम, लेकिन उसका बीज, उसका जो जड़ है, तो यहां से जब शुरू होगा तो वही लोग वहां पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में, इस ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में हमारे अनुभवी वक्ता अपने अपने विचार रखने जा रहे हैं। तो इस सत्र में, आज के इस सत्र के डिग्निटरीज को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। मोस्ट रेस्पेक्टेड श्री अरुण रंजन मिश्रा जी इज अ प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पाली एंड प्रकृत भाषा भवन विश्व भारती शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। मोस्ट रेस्पेक्टेड अरुण रंजन मिश्रा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर नीलिमा कुमजुला जी हु इज अ प्रोफेसर एंड डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सिग्मा यूनिवर्सिटी वडोदरा। मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर नीलिमा कमजुला जी। मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर रमा जीवियम, कोर ग्रुप मेंबर ऑफ स्पार्क विंग मंडी, आपसे अनुरोध है मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ टूडे सेशन श्री शशि भूषण तनेजा जी, इज द डायरेक्टर ऑफ ओस रिटायर्ड एट ISSA DRDO, आपसे भी नम्र अनुरोध है मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी, इज द चेयरपर्सन ऑफ स्पार्क विंग। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी, हु इज द जोनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पार्क विंग। ब्रह्म कुमार भारती भाई, हु इज अ कोर ग्रुप मेंबर ऑफ स्पार्क विंग, एंड ऑल्सो ब्रह्म कुमार संजय भाई, हु इज अ हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पार्क विंग। आपसे, आप सभी से नम्र अनुरोध है मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम दो मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठ करके उनको इनवोक करते हुए, उनको आह्वान करते हुए इस सेशन को हम आरंभ करेंगे। मंचासीन अपने अनुभवी वक्ताओं का स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ बुकेस और बैजेस के द्वारा सभी का स्वागत करें। आज के इस सेशन का टॉपिक द इनवोकिंग डॉन ऑफ अ न्यू एरा बाय एक्सप्लोरिंग इट्स सीड्स इन द प्रेजेंट टाइम। ये बहुत सुंदर टॉपिक को ओपन करने के लिए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड अरुण रंजन मिश्रा जी, हु इज अ प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पाली एंड प्रकृत भाषा भवन विश्व भारती शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। आपसे अनुरोध है कि आज के इस सेशन को आप ओपन करें। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ऑफ पाली एंड प्रकृत विश्व भवन भारतीय शांति निकेतन एंड ऑल्सो पीएचडी इन संस्कृत पुणे यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड इन न्याय फिलोसफी एंड पोएटिक्स फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज विश्व भारती मेंबर एंड एडवाइजर साहित्य अकेडमी एंड ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस AIOC, recipient of multiple honors, including Vyasa Bharati Sammanam and Vikram Kalidasa Puraskar, guided several PhD scholars in Sanskrit literature and Indian aesthetics. Most respected Sri Arun Ranjan Mishraji.
Om Shanti. Ratnakara Dhautapadam. हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यम वंदे भारत मातरम नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि ऑल एक्सट्रीम डिग्निटरीज एंड योगी योगिनीस ऑन द डैश प्योर आत्मन इन फ्रंट ऑफ दिस डैश. Well, in the beginning, I must express my heartfelt salute to Brahma Baba, to all revered Dadis, all the peaceful souls of this internationally famed organization or university. And I have a great feeling here when I am going to address. In Rigveda, there were at least 25 Rishikas who had their hymns inside this sacred and most ancient text. And presently, I also feel those Rishikas have come down upon earth, come down to Mount Abu, and here also there in this hall. I salute all those Rishikas of the Vedic times who have already arrived amongst us. When we remember that Vivekananda popularized one sentence of the Upanishad, Utishthata Jagrata Prapya Buran Nibhodhata, perhaps we are going to, at this juncture of time, we are going to follow that. But more than that, in Athar Veda, there is a very beautiful mantra, Utisthanari tavasam lavasva. Utisthanari tavasam rabhasva. Ralayu rabheda. Ra, la, both are same. O women, rise up and attain the highest goals of life. And today I feel that this is being materialized here through our Brahma Kumaris. The emancipation of women was popularized by Aristotle. He wanted to free women from the kitchen. And thereafter, we also see in India, Raja Ram Mohan Rai did something in that line. But Brahma Baba excelled all of them. And he not only emancipated women as Raja Joginis, but also made them instrumental for the spiritual freedom of the total globe. And that is why he excels everybody. That is my feeling. I also express my sincere thanks to Srikant Bhai, to Iti Bhavani, to Namita Bhavani, who have kindly offered me a place here on this stage today in this valedictory ceremony. I also congratulate the team that efficiently made this conference a huge success. And it is their untiring effort that brought out this success, which really added new freshness to our intellect and intelligence, our knowledge and wisdom. I am confident that this organization is doing and shall be doing a great favor to this globe, by eternalizing the peace everywhere, especially in this warring world. When we are going to speak about the theme of this topic, I would say that we have already got our very ever new seed, and that is yoga and meditation. And it has its seed in every era, and now also we feel it. But one thing I can say, that the total crux of the shastras, all the Indian shastras, the gist is taken by the yogins. And we pandits, we take only chhach. The gist of the sara of that dadhi, shastra dadhi, take only yoginis. So in Jnana Sankalini Tantra, verse 5, it is being said, sarastu yogibhi pitam takram pivanti pandita. So we pandits take only chants, but you yogis and yoginis take the shastra, sara of the shastras. And the popularity of yoga and essentiality of yoga has been highlighted from the time immemorial. What Bhagavad Gita says, I am reading out one or two verses. Tapasvibho adhika, tapasvibho adhiko yogi, jnanibhyosti matodhika, karmibhyo stadhiko yogi, tasmad yogi bhavarjuna. So Arjuna is being advised to be a yogi. And these yogis are the nearest persons of the Brahman. That is being said, yoginam api sarvesam madgatena antaratmana shraddhavan bhajate yomam same yukta tamo mata. Yukta sabda is used in many places in Srimad Bhagavad Gita, but here yukta tamo is the single word being used for the yogins, for those who meditate and those who work for the spiritual upgradement of society. When we come to the theme, we wish a new avenue, new era, and we wish to explore seed for our progress. And definitely, we must do research and innovation. Without research, no innovation, and no upgradation, no progress. Therefore, research is very much essential. But one thing, it's not that in all our efforts in research, we shall always succeed. We may fail somewhere. I will give one example. There was a boy named Jivaka. You know, he was a very famous ancient physician, Ayurvedic physician. He went to study in Takshashila, now in Pakistan. There in the Department of Medicine, the head of the department was Atreya, Maharshi Atreya. So he approached him. Then he gave him one field tour, field task, that you go and find out at least one tree or plant which is not medicinal by nature, which is not medicinal by nature. So he went, roamed and roamed throughout the world, and he failed to get a plant which is not medicinal. Came out, approached the guru and told Maharshi, I didn't find a single creeper, a single plant, a single tree which is not medicinal. So he failed in his mission. But he succeeded in the higher goal, achieving the higher goals of medicinal studies. Because at least this was very much clear that all the trees and plants, etc., are medicinal by nature. So therefore in research, sometimes failure gives us many, many good feedings. And with that we march ahead. And we do research and we need innovation for something new. And startlingly, the very word new and the very feeling of new is as old as Rig Veda. In the first sukta of Rig Veda, there is a mantra, Agnihi Purvevi Rishibhi Ridya Nutanei Ruta. So there are ancient rishis. In Rig Veda it is being said that ancient rishis means pre-Rigvedic rishis, they were there. Nutanei Ruta, new rishis have also arrived, new thoughts have also arrived. So newness has come every era, in the beginning of every era, and we are going to do that, we are trying to do that. Friends, definitely we must follow this experience of Zibako and mantra of Rigveda, where we can take this era to ahead, and we can experience the essence of our life and truth of our life and Brahma Baba. Well, yesterday also I was asking a question, and I do repeat here. Two things we have to face. There are two, you can say, predicaments in the present times. Number one, the wars in the world. Even now also, when we sit here, wars are going on and many are dying. Therefore, that is one, number one, war. I asked, how can we address the problem of war through meditation or through yoga? And second one is, whatever, by now, whatever effort we have put to this goal, the making all the people meditative on Brahman, and 24 hours meditative on Brahman, I feel only 20%, that is also too big. 20% population of this world are regularly meditating, are doing meditation for their own and others' spiritual fulfillments. Therefore, these two are predicaments. Number one is war, number two is much less number of people are doing meditation, performing meditation. What should we do for war? Well, in the World War I and World War II, a very magical thing occurred once. Some rishis in the Himalayas started meditating, practicing yoga for stalling these wars, two wars, World War I and II, and used their yogic power. Then why not we do the same thing? We can also congregate to eradicate the war itself, the meaning of war itself, to neutralize its effect through our meditation. That we should do, like the rishis of World War I and World War II. They did it, and their yogic effort really stalled the wars, both the wars. So that we have to do. Our collective yoga practice for eradicating the desire for war, connected to a kind of ego, should be solved through yoga. And second, as I said, that only 20% on this earth practice yoga or meditation. Then what should we do? Let us go to the village. I am a person, when I was a boy, I first of all got acquainted with Brahma Kumaris, with this university in a village. So there was a course, 7-day course in a village in 1978. Although before that in 1974, I attended one exhibition in our high school in Khordha. I am from Odisha, in Khordha, BJB High School. That was my first acquaintance. But we have to go to the villages. This is one seed. We have to go to the villages, make people more and more meditative. Nowadays they are more doing politics than meditation. So let us make them meditative. Perhaps that is the answer to my second predicament, as I mentioned, that we must do. Going to the villages and make people meditative. And there is one famous verse by Bhartrihari. Bhartrihari was a great philosopher, grammarian of ancient India. He has influenced many, many thinkers in later times. Bhartrihari says, in whatever field you are, you have to be interdisciplinary by nature. You cannot just follow one theme or one essence of somebody's thought, not like that. You have to be interdisciplinary so that you can be more powerful and forceful in your efforts. Prajna vivekam labhate bhinnai ragam darshanaihi kiyadva sakyam unnetum swatarkam anudhavata. Our prajna, our wisdom, vivekam labhate, it gets viveka, conscience. When bhinnai agama darshanai, when we go through other texts, other agamas, other disciplines, other practices. if we are not at least passively involved with those streams, then our stream cannot be strong. Therefore, pragyam vivekam labhate bhinnahi agama darshanahi. Friends, this may be one of the seeds. Nowadays, interdisciplinary study is a very, very primary aspect of our studies, of our research. And we must adopt that. That we will do definitely. And while doing so, we have to go to the other branches of philosophy. In Indian philosophy, there are six systems of Astika darshans. But I will just quote two systems about realization, self-realization, realizing the soul. How can I realize the soul? The Gautama's Nyaya system says, through Anubhyavasaya. What is Anubhyavasaya? Ghatam aham janami. I know this pot. I am knowing this pot. I am experiencing the existence of pot. Well, when I think that I am experiencing this pot, I have already experienced the pot through mind. Then who says that I am experiencing this pot? It is definitely soul. Therefore, the Anubhyavasaya is a technique through which the existence of soul can be felt, is being said by Gautama in Nyaya Sutra, Nyaya system. And what Vedantists do? Vedantists say, you experience it daily that you are a soul. How? When you get up in the morning, what you say? Sukham aham aswapsam, na kinchid abedisam. I slept very, very peacefully. I couldn't do anything. I couldn't know anything. Well, during the sleep, during the slumber, mind is inactive. Then who is saying that I experienced a very peaceful sleep? It is the experience of Atman. So Vedantin says that in Turiya stage you can go and experience the existence of soul inside you. So we have to go to the other fields, I am not going to all darshanas, only two I quoted. So we have to go to the other darshanas to make our understanding interdisciplinary and to make ourselves more eligible to understand our system. That we must do. And moreover, Vivekananda had popularized another thing, mind watching. When you watch the activity of mind, then the difference between soul and mind is very much clear. And there you realize your soul. So mind watching, another thing which Vivekananda popularized. Well, there are streams who conglomerate both soul and mind. That is also good. We accept that. Why? Because our Jayaguru Sanstha, his pioneer's name I'm not remembering, but they say that the soul is sea. When there are waves, those waves are mind. When wave is subsided, that is soul. So the mind, when mind is subsided, whatever exists is soul. And that is the philosophy of Kaivalya. What is Kaivalya? Only alone. Aloneness, Kaivalya, state of Kaivalya, the state of aloneness. So that Kaivalya occurs when mind is subsided. And for subsiding mind also, Vasishtha Ramayana, Yoga Vasishtha, there are also many principles, advices. So that word is very killing actually, mano nasa. How can you destroy mind so that only soul can remain? Otherwise, there will be only waves on soul and you cannot understand yourself. That you have to do. And these people, they always do that. Buddhists also sometimes, they simply eradicate the concept of soul and take mind in its place. Therefore, in their system, there is no soul at all. But mind is there because Buddha's birth, rebirth, as we understand in Jataka stories, birth is there, rebirths are there, Buddhas. So if rebirths are there, then soul must be there. Their answer is that no, mind is there. Mind is coming with Sukma Sarira in all the janmas, all the rebirths, all a particular existence of a man. That we must understand. But one thing we have to feel, that we are leading a dual life. We all are leading a dual life. Why? Because when we meditate, when we come to Mount Abu, or when we sit at home and meditate, this is communion with the supreme principle, supreme being. But then We take a bag and go to market for vegetables. That is another life. A dual life we are maintaining always. When we go to another world, the first world is almost last. We always try to have japa and have yade of param brahma, all that. But even then we purchase tomatoes. We forget that because we think about tomatoes. And whatever thinking, they all come in a series. There are differences. We do not feel that differences. In Nyaya system, there is one principle. Utpala satapatra bheda nyaya. There are hundred leaves, lotus leaves, and one needle pierces them in 1 second. We feel that at a time it occurred, but no, there are differences between the one piercing and second piercing. Therefore, we have to, that is the reason why rishis wanted to just obliterate the second life. Second life is going to market. They went to Aranya. And the importance of Aranya came there. And in Rig Veda, there is one sukta, Aranyani sukta, where importance of Aranya is being said and how Aranya is elevating human beings in their spirituality. That is being said. Actually, Aranya is Ranyam Nasti Yatra Tat Aranyam. Ranyam means war, where there is no war. Those people, they live there, they peacefully live there. There is no struggle of life. That is Ranya, absence of Ranya, absence of the struggle of life is there. That is why people go there, forest. Let us do it here also, like the Chipko movement. They just stood close to one tree, all the volunteers. We can also make some pendals around one tree and sit. So in forest, suppose 1,000 trees are there. 1,000 people can sit near tree and do their meditation. Means go to the forest and meditate. That was the primitive idea that we are doing. And of course, there are many other things. Surely, I am shortage of time. I am not going to say all the things I have thought out. But one thing, yad karna, that smarana, is a very essential thing. There are Navada Bhakti, we know, Bhakti is of 9 times, Sravanam, ityadi, but Sravanam, Kirtanam, Dasyam, Sakshyam, Atmani, Vedanam, then Smaranam is also there. And that Smarana is a very powerful instrument in making ourselves closer to Brahma Baba. That we are doing, that is very nice. But last thing I will say, many other things are there, but last and a very important thing I will say, that is meditation. In meditation, what we are doing and what ancient people were doing, that we should, at this juncture, we should include that also. We have two things in meditation. One is imagination, that I am going in a golden rath to the Satya Yuga or to the township of Brahma. That is imagination. Mind you, imagination is not a small thing. It has a very great psychic power. I will come in 1 minute. And second, auto-suggestion, that I am feeling good, I am happy. This is auto-suggestion. Imagination and auto-suggestion make the meditation that we practice. But imagination is a great power. Why? Because there are many means of valid cognitions. At least 4 means of valid cognition we know. Pratyaksha, Anumana, Upamana, Sabda. Similarly, imagination or kalpana is also a means of valid cognition. It is accepted by Pauranikas. Pauranikas accept it as a valid cognition. So that is a powerful thing for meditation that you do. And secondly, auto-suggestion. I feel happy, I am santa. This is auto-suggestion, means giving suggestion to oneself. In modern hospitals, auto-suggestion is being used to cure the patients. One patient will think at night that tomorrow I can stand up. He is bedridden. But at least tomorrow he may come to sit up. So this is auto-suggestion. I will hope, Brahma Baba, let me get up 4 o'clock at night. I give one auto-suggestion to me that Brahma Baba will definitely hint me that it is time. So this is auto-suggestion. But beyond that, one thing is there which we must add also. Because we are going to innovate. When we go to innovate, we have to add new things also. Because the essence of meditation is making the mind vacant. That was Manonasa I was telling. making mind vacant in Bhagavad Gita, na kinchidapi chintayet. That phrase is there. You have to just ward off all your thoughts. Na kinchidapi chintayet. So sunyatva is a great essence of Param Brahma also, because there is one, you know, the newest religion in Odisha, Mahima Dharma. We all perhaps know Mahima Swami and Bhima Bhoi. Rupa reka nahi he, sunya dehi, sunya ubha hoi. So you have no rupa, nothing, and still you stand in the air. Means giving bhakti to sunya. Sunya became a god, that is Brahma Baba. And that sunyata we must feel in meditation. That is another aspect of our meditation. We must do it. There are many other things, friends. I will leave. I know that many more valuable talks we are going to listen. Vande Bharat Mataram, Bharat Mata Ki Jai.
Thank you very much, sir, for your beautiful presentation. You quoted many scriptures and beautiful knowledge that you gave from the scriptures. And you also mentioned that we need to go to the villages to give this knowledge and make them the meditators. Brahma Kumaris have been doing this services for the past, I can say, 30-35 years. Under Brahma Kumaris, we are having around 20 wings, which are catering to different professionals. Keval hum gaon ko ka udhar nahi kar rahe hain, lekin gaon se lekar ke har level, har profession, jaise yahan abhi aap scientist भाई बहने यहाँ पहुंचे हुए हैं, ऐसे हमारे 20 विंग्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, एजुकेटर्स, मीडिया विंग, यूथ विंग, चिल्ड्रंस विंग, पॉलिटिशियंस विंग, ऐसे हर प्रोफेशन का एक विंग बना हुआ है. तो हर प्रोफेशंस को ये मेडिटेशन सिखाने की का प्रयास हम सब कर रहे हैं. गांव से लेकर के हर शहर में भी हम आप देख सकते हैं अपने ब्रह्म कुमारी सेंटर्स है, और विश्व के स्तर पर यूएन में भी हमारा दायित्व रहा हुआ है. वी आर द कंसल्ट, वी हैव द कंसल्टेटिव स्टेटस एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिसेफ एंड ऑल्सो इकोसॉक. सो ये प्रयास तो ब्रह्म कुमारीज कर ही रहे हैं. और एक बहुत महत्वपूर्ण जो नारा हम लेकर के चल रहे हैं वो है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन. दूसरों को परिवर्तन करने से पहले मैं अपना परिवर्तन कर लूं, तो अपने परिवर्तन से अपने परिवार का परिवर्तन होगा, अपने शहर का परिवर्तन होगा. सो धीरे धीरे विश्व का परिवर्तन जरूर होगा. जैसे आपने कहा कि हिमालय में योगी बैठ करके वो योग, उन्होंने योग किया ताकि फिर वर्ल्ड वॉर रोक सके. तो शांति की स्थापना हम जरूर कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा. मेडिटेशन से न केवल खुद के जीवन में शांति लाए, लेकिन विश्व के स्तर पे भी हम शांति जरूर ला सकते हैं. न केवल शांति लाए, लेकिन विश्व को परिवर्तन करके फिर ऐसे देवी देवताओं की दुनिया, ऐसे स्वर्ग की स्थापना हम जरूर कर सकते हैं. इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर नीलिमा कमजुला जी, हु इज अ प्रोफेसर एंड डीन एंड द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सिग्मा यूनिवर्सिटी वडोदरा, टू शेयर हर व्यूज ऑन टुडेज टॉपिक. यूजीसी डब्ल्यूएम पीडीएफ फ्रॉम एनआईटी वारंगल, पीएचडी एमबीए एमएससी साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी from Kakatiya University, qualified for UGC NET, AP SET, and also presented papers at numerous national, more than 30, and international conferences, receiving recognition for notable achievements. Leading a team of MBA and MCA faculty and staff, responsible for the institutes and universities' strategic planning and academic development, developed and implemented plans that resulted in rising students' enrollment, better faculty development, and served as the director of university's research and development cell. Established industry academia partnership and also worked with senior administration to advance industrial initiatives, research and faculty development. Most respected Dr. Kamjula Nilima.
Om Shanti. We are in a self-actualized community today. Please remember, we are in a self-actualized society, community. We will come back to the word, why I called it as a self-actualized society through my presentation. This is only for 5 to 6 minutes. I will show the slides and slides speak to you more than my speech today. So, in connection to today's topic, let me give my own views, and rather it's a discussion. We will say yes or no to the slides today. So, to nurture the nature, and I think we have individually, we have a role towards nurturing it. Do we all believe in it? Yes? So, the Mother Nature is ultimate source of energy to all of us. Yesterday, Bala Bhaiya also told, like, every individual is independent, unique in their own way. So, the same thing. Human beings are independent in their own way and unique in their own style. But for nature, we all are same. Do we agree? Yes. So, moving on. I am Dr. Nilima, standing in front of you by the grace of Baba. Thanks to BK community, Srikant Bhaiya, Vinay Bhaiya, Kalpana Didi, and all the angels of this umbrella, all the brothers and sisters, my heartfelt thanks for making my presentation possible here today in the Valley Rectory. Thank you so much from my bottom of my heart to all of you. I am associated with this community since 8 years. Almost every year I come to share my views, and it is my responsibility to give my views to all the people so that one can spread it in positive way, so that we can create a positive world in any direction, any theme that we have chosen. Ultimately, it is going to talk about the goodness of the world. So let us move on to today's topic. It is nurturing the nature, and it is the role of self-motivation. And next slide, please, Didi. To start with, motivation is a Latin word actually, and it is move, to move. To move ourselves towards a goal is self-motivation. There are many famous theorists. Psychologists, management thinkers have come up with their theories. But for today's discussion, I'll take only one theory and I'll try to connect it with nature. How to nurture the nature. Next slide, please. And please go through this slide. Yeah, sorry. This one, right? According to Abraham Maslow, there are 5 categories of needs. Most of the group here knows about this basic theory. If you are from management or commerce background, or if you are listening to the yoga meditation sessions, may come across with all types of needs directly or indirectly. Physiological needs and safety needs are the basic needs. Towards your left, I am talking about your professional front. Towards your right, examples of needs in your personal life. Okay? So physiological needs are basic needs like hunger. Security needs are the way we are living in. We have a shelter, job security. Social needs or love needs are belongingness needs. We need to be belonging to a community. Esteem needs are talking about our job title, role and promotions and all at the work. Actualization. So here we are coming again. Self-actualized society. The best example is Brahma Kumaris. Okay? Why we are talking about it? We are going to come in the next slide. Okay? Am I clear with this pyramid of Maslow? Yes. Now we will try to connect this needs, and what we have to do to nurture the nature and for the sustainability. So, physiology, as we, you know, we can generally, we understand, like, what we have to do. We have to clean up our air, water, fertile soil, biodiversity, all these things that are in our hands. Why I am saying self-motivation. Everybody says to us, like, you know, we have to do it. Let us build a green world. But unless until we are motivated towards it, we are not going to achieve it. How far we are maintaining this cleanliness in our surroundings. The best example is our stay here. We can stay in a peaceful environment, you know. We can have 6 months to 8 months of healthy life after moving from here to our places. Why? Because the environment is so pure here and thought process is also so pure. But why can't we carry it forever? And this purpose of this community is to do all these things for us. So try to avoid all the situations wherein which we are going to struggle. So that if we do it, our followers will do it. And next is ensuring a stable climate towards the safety. If we are constructing buildings, we are going to spoil the surroundings and we never think like, you know, I have constructed my home, bus. But how far we are cleaning up the other thing and trash and how formally we are moving all the things to trash. Yes, of course, there are people who are having this responsibility, but we can educate others who are not doing it. This is our responsibility. And I am here to just give a reminder to this responsibility. And nature supports all the communities if you start loving nature. This community, we have a great love towards Brahma Kumaris. With love, that love made us to come here and sit here and listen to all the sessions and meditate here. But the same love we can give to nature and to get its blessing. And more NGOs and today in NEP 2020 of higher education, NAC processes and everything are specially kept and subject knowledge systems. Everything is kept important. They are playing their own roles to protect this nature. Corporate social responsibility activities, everything. So we have to focus more towards our society where we are living. If you are jobbers, please focus at your job, what we can do. And if we are at our place, our nearby society, how can we educate them? That is what is the role, that is a takeaway from here, from this session. And self-actualization, the recent blood donation activity of this community is the best example here. I'm coming back to the self-actualization. So this is awesome. And this we have to carry, how we have to be actualized and how we have to be unique, uniqueness that we have to build. And this is all not possible in a single day. There is a huge struggle to stand here in front of you, being in this particular role. Everybody, every angel here is very, very dedicated towards its target. And that is why we could make this community as a self-actualized community. Only BK, the only BK. So this is what we can spread through and learn through. From here, and we can carry it to our lives and we can internalize this so that we can be in a self-motivation pace. But this is what I wanted to communicate from this dais today. And thank you all for giving me this opportunity. And the last slide, I am leaving you. Just go through the slide. And let us join hands to protect the beauty of nature because it is our ultimate destination. Do we agree? Yes. Have a nice time. Thank you. Om Shanti.
Thank you very much, Dr. Nilima, for that short and sweet presentation. And she emphasized on protecting the nature. As we all know, हम सभी जानते हैं ये संसार तीन सत्ताओं का खेल है, वो है प्रकृति, पुरुष और परमात्मा. सो जब आत्माओं की शक्ति सत्वप्रधान हो जाती तो प्रकृति भी सत्वप्रधान हो जाता है, जिसको हम सतयुग कहते हैं. द होल नेचर इज इन हार्मनी विद ह्यूमन बीइंग्स. बट आत्माओं कि जो स्तर जब तमोप्रधान हो जाते हैं तो प्रकृति भी तमोप्रधान हो जाती है. सो प्रकृति इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल्स दैट इज पुरुष. सो व्हेन वी चेंज द प्रकृति ऑटोमेटिकली चेंजेस. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ नॉट ओनली टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द नेचर विथ आवर हाई वाइब्रेशन हाई पॉजिटिव एनर्जीज. Thank you very much once again, Dr. Nilima. Now I would like to invite Brahma Kumar Bharti Malaya to give the conference review. Brahma Kumar Bharti is nearly 4 decades in R&D and IT, spanning ISRO, Thomson Multimedia, Renesas, and L&T Tech. Currently, he is the CTO of Engineering Blueberry Semiconductors and founder of a concept to system consultancy. Former senior scientist at ISRO developed onboard computer system for launch vehicles ASLV, PSLV and GSLV. Conducts sessions on engineering empowerment, VLSI, leadership, wellness and consciousness for leading corporates and institutions. 25 plus years in Brahma Kumaris, integrating spirituality with technology and work culture. Blending science, engineering and spirituality, he envisions technology with a heart and leadership with a soul. Most respected Brahma Kumar Bharti Bhai.
Om Shanti. Thank you Suman Bhainji for the introduction. So, I am here to give a brief review of the 3-day conferences, how it went and what are the sessions we gone through it. So, we had a very wonderful time and we had a very good sessions. This conference was of course adorned by more than 30 plus speakers. And more than 30 or 40 sessions we have it actually on the theme of spirituality for human existence, innovating the newer avenues. So we started on 28th evening, 5:30, and we have about almost 600 delegates from all over India, comprising of various levels, including MLAs, vice chancellors, chartered accounts, chairmen, directors of organizations, scientists, etc. So the session was started on 28th evening. Brother B.K. Sanjay welcomed all the distinguished guests on the stage, and Rajyogini Alka Didiji, the zone coordinator of Maharashtra Sparking, welcomed the delegates with highlighting the achievements in their respective domains. And followed by, we have the greetings from Rajyogini Ambiha Benji, who is the chairperson of Spark Wing, shared the brief on the conference theme, that is on the spirituality for the human existence and innovating the newer avenues. And there, she stressed really why it is significant and how much is the values which has left behind now and how it has become a threat to even to the existence of the human being, due to the numerous increase of depression, panic, stress, etc. And the solution for which, how it can be found in this spiritual knowledge, where which is given by the highest of the highest of Supreme Father, which will be revealed to the delegates, and how we are revealing those things in the subsequent sessions actually. And it was hosted by the chief guest, Dr. Kamachi Ayer, who was the pro VC. She briefed that how the skill build-up is important. It is not only the academic knowledge what is getting it, what is lacking in the industry is the real skills what is required, and how her effort is trying to bridge this gap by putting that skill build-up. But there, the most important is how to inculcate the values in the system actually. So she is also connecting with Brahma Kumaris and trying to bring up more programs for the students and inculcate the values into the system actually. So followed by Rajyogini Sarojit Didi, who is the Spark Wing zone coordinator for the Delhi zone, had conducted an experience session of the meditation and made the delegates to experience with the meditation commentary. And guest of honor, Dr. Lalit Verma, the Chief Secretary of Government of UP, he made a presentation and where he also highlighted how it is important for the meditation and what are the different dimensions of the spirituality and their roles in the human life, etc. And followed by Gustav Werner Roger Shakshena, who is the head of scientific advisor presently working for the Patanjali Research Foundation, also stressed the fact that being spiritual is to realize what we are with our nature, neighborhood and the environment. And then also the session was adorned by Dr. Amuta Pattaraju, who was an international representative from Malaysia who came here to attend this program, showered her greetings. And she also shared that how she experienced the relationship between the body and the mind. And she also said that she wanted to take it up further in her profession and share the same with her organization and bring others also here for that. And with that, the session ended. And the next day, we started with a pro-inaugural talk session. That is on 29th, where Professor Kamlesh Jha, the Department of Physiology, speaking on the neurobiology of meditation and its effects. So he shared the insights on the research work, what they carried out in the All India Institute of Medical Science and the various activities of the brain and its function vis-a-vis Raja Yoga practice, how Raja Yoga practice and how it is influenced the brain functions. And in the same session, speaking on the research findings from the Spark Lab, Dr. Ramajayam, who is the Assistant Professor of IKS, shared in a nutshell on how to practice Raja Yoga and how it enhances the spiritual lifestyles, seamless shifting of attention on different tasks and promotes positivity. And in the inaugural session, Raja Yogini BKS Sarol Didi again welcomed all the delegates and followed by our brother Raj Yoga BK Srikant Bhai, National Coordinator of the Spark Wing, stated that the Spark Wing is the brainchild of how the Spark Wing has evolved actually basically. So it's the brainchild of late brother Raj Yogi BK Ramesh Bhaiji, and it was established in 1995. In fact, he also recalled how the idea of conducting this sessions came in sharing the findings of spiritual organizations with the scientist, with the idea of our former president Dr. Kalam, who expressed the desire to Ramesh Bhai in a meeting that findings of the spiritual research by Spark should be shared with the scientific world actually. And this has made the way for organizing SIR conferences, and today we are conducting our 19th conference, which is started from 2007 actually. Followed by the chairperson, our Raja Yogini BK Ambiga Benji of Spark Wing, expressed the fact that despite of advanced technology, the humanity is heading towards crisis. And she said the main reason is the absence between inner and the outer world actually. So there is no proper connectivity. She appealed to all the guests. In fact, you all should be encouraged to take our Raja Yoga meditation course, of course, which is only 30 to 40 minutes of a day. You spend it in a week, and which if it is imparted, and it can really bring differences and the way you are going to perform the things actually. And followed by our senior brother Rajyogi BK Mritunja Bhaiji, who is the additional general secretary of the Brahma Kumaris, given the impressions and said that he made the statement clearly that spirituality alone can create an enlightened and a peaceful mind, and society will be benefited only by inculcating this sustainable knowledge and enabling to lead a life of bliss or prosperity along with whatever advancements happen in the technology actually. Because technology advancements without these values being embedded into that is not going to fulfill the real benefit what it has to derive. And followed by Chief Guest Dr. Saraswat, who was the Honorable Member of Niti Aayog, shared his opinion that our research, what we do in Brahma Kumaris, should be combined with the science so that it can lead a lot of advantages for the humanity, both at physical as well as mental levels. And he also felt that this is supposed to be a commonality of all religions, is the union with ultimate actually, means ultimate with one. So he said it is important how to take it forward of merging these two things actually. And further followed by Ajay, Sri Ajay Mahesh Mahavar, who is the MLA from Government of Delhi, said that BKS is giving an example of spiritual enlightenment through their day-to-day life actually, and promoting brotherhood, compassion, selfless service and transparency. And followed by our special guest, Dr. Vinod Verma, Senior VP from Hindalco, appreciated that overall activities of BKS and said that BKS impart knowledge which is pertaining to spirituality and human existence and innovation, etc. And he felt that is the only way to lead a peaceful as well as blissful life. Followed by, we have a poster sessions. There are about more than 10 or around 10 papers, presentations, posters were presented, which is talking about the diversified things like Bharat's traditional knowledge, spirituality and global peace, and role of spirituality to pursuit of the science, or something with respect to how this spiritual practice within BKS can lead to a healthy lifestyle, plus how this cultural significance and how it can be correlated with respect to the global philosophies, and exploring the linkages of spiritual synergies, occupational stress and satisfaction, how they are connected each other, spirituality for human existence, and how Raja Yoga meditation improves mind and the moral values, and how effects of a structured yoga in men. They did an experiment and also find out the results of how a pre and post intervention study, what is the result of it, and spirituality for the human existence, history, approach and applications, and also something with respect to how this kind of mindfulness also can be achieved through these practices, and environmental development in human civilization through spiritual awareness, etc. So these are done by various scholars with their own research things, and it was displayed for all of you for the review also. If anybody is interested further on this, can be connected on that. And also part of the greetings, our administrative head conveyed the blessings that to all the researchers, it is very important that you add a spiritual dimensions in our daily life, which should be part of our practice, which is major, which is a missing dimension in the growth of our technology or growth of our research actually. And in the plenary session, we had pertaining to the theme of challenging the self, key to innovation. The chairperson So he gave that on the theme of the challenging the self, key to the innovation. So he said about the unique feature here is to expose the realizing the self and realizing the supreme actually. And as followed by the guest of honor, Sanjay ji has mentioned that BKS institution itself is an innovation by Almighty, and has over 80 years of spread across. I think he appreciated how their organization has grown, etc. actually. And followed by our Rajyogini chairperson Ambika Benji stated that Almighty is the true greatest scientist, has bestowed us with a variety of innovations actually. Followed by, we have plenary sessions. and where we have the ethics in the age of AI. Nilesh, ISRO director from Ahmedabad, participated in that. In fact, he highlighted how this AI could be disruptive if it is ethics are missing in that actually, and given a good example of in his own organizations how a recruitment has failed due to the way of AI's unethical usage actually. And then our keynote speaker Usha Benji again maintained that how the God creates and sustains and destroys the things, and how this AI in its way it could be beneficial or it could be responsible for the sustenance also actually. And followed by, we have our additional administrator Jayanti Didika, special session was there where she was talking about the silence, science of silence part of it, where she said it's very important that how we vibrate, how we generate our vibrations in the environment, and how it can create a balance and how it can create a benefit to all the human beings actually. And followed by, we have a plenary sessions, and then we have a session on the session where the nurturing the nature of sustainable tomorrow was there, where the more focus was how to give a sustainable tomorrow, and for which it is very prominent to sustain the soul conscious for the day actually. I mean soul conscious practice for day-to-day practices. And followed by, we have multiple speakers are there. In view of the time, I may not be able to go through all the things. And what I want to conclude is, basically, we have a sessions where we highlighted how it is important for the spiritual existence, the practice of soul consciousness and practice of connecting with the supreme consciousness, which you all have undergone through the everyday sessions, what we did in the morning actually, which is very, very important. And when you go back, please try to connect with our BK Brahma Kumari centers, which is always almost there in every place of the nation, and in your place also it will be there. Please get connected with them and make a follow-up of what you learned it here by taking our Vajrayoga meditation course and continue these practices. Thank you very much.
Thank you very much, Bharti Bhai. Abhi thoda sa break lenge aur main nivedan karti hoon. वीना बहन और अश्विनी बहन एक बहुत सुंदर पपेट शो हम सभी को दिखाने वाले हैं बिकॉज वी हैव बीन लिसनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ चेंज एंड व्यू दिस ब्यूटिफुल पपेट शो बाय वीना बहन एंड अश्विनी बहन और इनका थीम है परमात्मा का सत्य परिचय
पिता का सत्य परिचय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोए ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए चुन्नीलाल गीता के अध्याय 11वें के 53वें श्लोक में भगवान ने कहा है नाहम वैदेर न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा अर्थात मैं जब तप दान पुण्य करने से नहीं मिलता अब आप ही बताइए बरसों से आप कभी बजरंगबली कभी कृष्ण कन्हैया तो कभी शिवजी की माला जपते उपवास करते व्रत करते आए क्या कभी उनके वास्तविक स्वरूप को देखा उनसे कुछ प्राप्त किया क्या आपके दुख दर्द दूर हुए जन्मों जन्म से तीर्थ यात्राएं की गंगा स्नान किए हर साल कितने महात्माओं ने भी गंगा स्नान किए भारत की कौन सी आत्माएं हैं जो पावन हो गईं?
तुम कौन हो भाई और मेरा नाम कैसे जानते हो
भगवान के भक्तों को कौन नहीं जानता समझ लीजिए मैं भगवान की तरफ से आपके लिए एक आमंत्रण लेकर आया हूं
आमंत्रण
भगवान से मिलने का
सचमुच क्या मैं भगवान से मिल सकता हूँ
हाँ हाँ क्यों नहीं लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा
कैसे प्रश्न भाई? क्या भगवान सर्वव्यापी है? हाँ, वो तो कण कण में है।
अगर वो कण कण में है तो फिर उन्होंने गीता में क्यों कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात मैं धर्म ग्लानी के समय पर आऊंगा। गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में परमात्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा है, अजो अपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममामया। अर्थात मैं अजन्मा अभोक्ता निराकार हूँ, क्या ये सत्य है?
हाँ बिल्कुल सत्य है।
फिर गीता में जो श्री कृष्ण का नाम है तो कृष्ण तो अजन्मा नहीं है बल्कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, अभोक्ता भी नहीं बल्कि माखन चुरा चुरा कर खाते हैं, और ना ही निराकार बल्कि देहधारी हैं।
भाई तुम जो भी हो बात तो पते की बता रहे हो।
गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक तो याद होगा ही, जिसमें भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सारे धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जाओ। अब श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है और स्वर्ग में कोई धर्म तो है नहीं, तो श्री कृष्ण कैसे कह सकते हैं सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जाओ?
कहीं यही तो भगवान नहीं जो मेरी परीक्षा ले रहा है?
क्यों चुन्नीलाल, मुझसे कुछ कहा क्या?
नहीं नहीं।
चुन्नीलाल भाई, अब आप ही बताइए, जब हम किसी भी देवी देवता की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, सोलह का संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है, फिर भी हम इन्हें हिंसक बनाए बैठे हैं। जब देवता अहिंसक हैं, तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्या हो सकता है?
अरे भाई अब बस करो, मेरे पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, तुमने तो मुझे और ही उलझन में डाल दिया है। अब तो इन प्रश्नों का हल पाकर ही शांति मिलेगी, फिर ऐसा भी लगता है कि इन प्रश्नों का हल पाकर शायद मैं अंधश्रद्धा से बाहर आ जाऊंगा और बहुत जल्द ही भगवान से मिलने की मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी।
जरूर हो जाएगी मेरे भाई, लेकिन इसके लिए आपको 7 दिन तक प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकाल कर आना होगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में।
जी हाँ मैं जरूर चलूंगा।
तो ठीक है भाई, फिर कल वहाँ ही भेंट होगी।
कल उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर।
बहुत खूब। अश्विनी बहन और वीना बहन थोड़ा आगे आइए। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था, और आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, वापस अपने शहर में जाने के बाद 7 डेज कोर्स जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 3-4 सेशंस तो हो जाएंगे मेडिटेशन के, लेकिन फिर पूरे 7 दिन के कोर्स लेकर लेंगे तो फिर पूरी तरह क्लैरिटी आप सबको मिलेगा। अभी मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करने जा रही हूँ प्रोफेसर ब्रह्म कुमार डॉक्टर रामाजयम, जो कोर ग्रुप मेंबर है स्पार्क विंग के, आप मंडी से यहाँ पधारे हुए हैं, एक्शन प्लान हम सबके समक्ष रखेंगे। इज अ साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसाइंस एंड योगा रिसर्चर एंड राजयोगा प्रैक्टिशनर, मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम मद्रास मेडिकल कॉलेज विद अ जॉइंट PhD इन साइकेट्री एंड योगा फ्रॉम निमांस एंड यस व्यास यूनिवर्सिटी बंगलोर, एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन साइकेट्री पेशेंट्स यूजिंग योगा इंटरवेंशंस EEG, fMRI and TMS are designed Raj Yoga based resilience programs for students. He is also the core group member of SPARC, Brahma Kumaris, and also managing Raj Yoga research projects across India. The faculty at IIT Mandi and leading work at the Indian Knowledge System and Mental Health Applications Center. Former scientist at NIMHANS Center for Consciousness Studies. Has published numerous high-impact international neuroscience articles practicing Raj Yoga since 2004. Is bridging modern neuroscience and ancient wisdom, transforming mental health through science and spirituality. Most respected Professor Dr. Ramajayam.
Om Shanti and good morning. Om Shanti and good morning. It's for all of you only, not for me. Thank you. So I will just give a brief idea about the different kinds of thoughts and ideas that has been shared here on this stage since last few days. How can we translate those things into actions? So I hope you have been bombarded with lots of interesting ideas. So it's very easy to discuss lots of ideas, but when it comes to translating all those things into action plans, we get a lot of hiccups. And that too, especially if it is a spiritual idea, translating that into a kind of testable hypothesis and then experiment, we really struggle a lot. So, but we have handpicked a few thoughts that has been shared here, which can be definitely converted into some kind of fruitful research works with some actionable service plans also. So the first and foremost thing is related to the SparkWing infrastructure itself. You would have heard in Srikant Bhai's presentation how SparkWing has started as a small study circle in a small room here, and slowly it has grown into a kind of dedicated research wing which has published numerous high impact factor journal articles. But still, what we are currently lacking, as per our respected Ramesh Bhai, who was one of the founding pillar of this SparkWing, is we have so many special interest groups which spans from medicine, psychology, next slide please. So different domains we actually cover, but in terms of research, if you look into the publications, whatever has happened till now, it is predominantly to do with neuroscience and psychology, to some extent in physics also. So, but our respected Ramesh Bhai, he wanted very much, very deeply from his heart that spirituality is not something to do with only human body or mind, but it's to do with multiple other things, including nature and many other domains as well, which is what is listed out here as special interest groups. So I think we have been proposing this for a longer time, but this is now right time for us to make a proper action plan and convert these things into a reality. So we would like to make a kind of dedicated, registered body which can be completely for research and development. Though we have now SparkWing, it is still not a registered body which can actually apply for independent funding. Though we have done a lot of funded research work also in collaboration with various institutes across India and abroad as well, but still independently SparkWing is not a registered body which can apply for any funding to any of the funding agencies. So with all these things in ideas and with an idea to expand our research work into all these domains which are listed out here, we would definitely make some concrete plans and then make SparkWing as a dedicated research and development wing which would expand its wings to all these kinds of domains which are listed out here. So that is one of the most important key thing that we have pondered upon. Yes, next slide please. The other thing is, in science today, one of the interesting topic with no answers is what is consciousness. There are so many things that are going on in the name of consciousness, but still, if you really ask yourself what is consciousness, nobody knows the answer. Of course, in spiritual domains, if you go, they would talk a lot in terms of experience, and that's true as well. But the more we think in terms of some kind of research-related action plan in the context of consciousness, somewhere or the other, there are lots of bottlenecks. And the most important, significant proof that we have for this in front of us today is there are more than 200 theories of consciousness, which basically means we don't know anything about consciousness. For example, if I have a proper action plan, I would just say that this is a plan 1, 2, 3. If I don't have any action plan, then I will start with some story and I will end up with some story which neither I understand nor you understand. That's the same thing that is prevailing in the name of consciousness. So related to consciousness, what we want to do is, we want to have some gatherings in the names of seminars and various conferences to be held at different prestigious institutions across India, which would be of course facilitated by SPARC. And the core idea of conducting these seminars and conferences would be mainly to work in terms of hard problem and also the soft problem related to consciousness. Even though it's very difficult to crack this thing related to hard problem of consciousness, but definitely we can think in terms of some of the experiential aspects of consciousness which can be taught to others, and it can be given as a kind of trainings. It can be in the name of meditation as well, so that that can give some kinds of fruits to the society. When it comes to the other side, the soft problem of the consciousness, many experimental designs definitely we can design, and those things can be executed for sure. So this is what we have in our mind in the name of organizing seminars and then conferences in the context of consciousness. And we have some prestigious institutes in our mind also, like for example NIMHANS, Indian Institute of Science, Bangalore, and some of the IITs as well. And some other institutes also can collaborate, those who are like-minded, to work along with us. Yes, next slide please. The other area where we want to really work in terms of some research project is related to stress. This is one of the commonly abused word also, I would say, but without knowing anything about what it is, because we actually do not work on it, even though we know a lot about what is stress. In fact, if we ask ourselves what is the most communicable disease that we have seen in this world till now, instantly all of us would say, what we would say? COVID. Yeah. But in fact, much more serious than COVID, there is always one thing which all of us know, but we never recognize, and that is actually stress. All of us would have definitely experienced this. For example, in your home itself, if somebody is in utter sadness, whether you like it or not, definitely it reaches you, and somehow or the other you also get affected. And it is such a contagious disease, but we never recognize and we never take any action upon those things. So that's the reason why we have taken this as one of the important things, especially in the context of how can we develop our resilience. Because there are so many disorders where we have no solutions even now today. The medical fraternity knows this very well. So the best way in this context is, can we develop our capacity to prevent or to manage what are the problems that we have in a better way? To put it in one word, can we develop our resilience? And particularly, the area where we want to work in the name of stress, resilience and wellness is something related to the concept of Ayurveda, which is now very commonly discussed in research areas as gut-brain axis. As it is said in Ayurveda, everything begins from the gut, and in fact it is true as well. And it is becoming very much evident in the digital era. The best example for this is, say for example, if somebody is hooked to some gadget, the first and foremost thing that gets affected is their sleep-wake cycle, because their exposure to light, everything gets drastically changed. As a result of that, the entire hormonal system that gets completely disrupted. The moment sleep-wake cycle gets disrupted, the first and foremost thing that changes is the kind of preferences that you have for your food, the timings where you'd like to take your food. And this is where the entire gut system gets confused,
And in this context, gut is also considered as a kind of second brain. And it is very easily affected by our stress. Of course, with resilience as well, it should get impacted. So keeping this thing in mind, we would like to have a very elaborate research project, maybe funded, exploring this gut-brain axis, and finally finding out something which can be translated as a kind of application to the society, where we can come up with some solutions for most of the stress-related disorders, including gut-related disorders. Yes, next slide, please. The other area which is haunting the society today is something concerning the youth, of course, not just only youth, adults and even elderly people as well, which is not visible, but very much visible among the youth, the problem of addiction. So we are doing a lot of works in the name of addiction, but still a kind of solid research work is yet to happen in this area. So now we are thinking very deeply how to make some kind of solid research work, because as most of us know, rehabilitation for these people who are addicted is something very much challenging. Even the medical fraternity knows this. So the best way what we are actually conceptualizing is, can we actually think of something which can be a better preventive tool? Of course, it can become a therapy also in the long run. Just to give some simple tips and awareness-related programs or mental support systems for the youngsters, let us say starting from their school days and also their college days, and then follow them up for a longer time as a kind of long-term cohort study, and then see how many of these kids who are exposed to these kinds of holistic wellness centered around habits and also happiness, they have a healthy lifestyle compared to other children or the kids who are exposed to, who are not exposed to these kinds of interventions. Can we see the conversion rate among these kids, how many are getting converted into addicted children and how many are having a healthy lifestyle? So we are definitely thinking something solid on these directions also. Yes, next slide, please. So related to the addiction part, the key area where we really want to hit is, we want to strike is, developing some kind of happiness and then habits related curriculum which can be a part of school education. Of course, in some places, in some of the states, it's all running already also in different names. And NCRT also promotes a lot of things in the name of value education. And the new educational policy also supports all these kinds of inclusion. So this can be very well implemented, and we would definitely come up with some solid plan which can be taught to others also, particularly the teachers, and even the parents also can be sensitized. Of course, the students are going to be the main targets. And some of these kinds of work we are already working in Himachal, where I am placed currently. We are working with some of the universities, and in fact, government is also sending some of the school teachers, secondary and high school education teachers, to Brahma Kumari centers for 2 days workshop. We would like to expand this across many places, and even the domains within which we are working, we would like to expand. Yes, next slide, please. The last one, but also very important, is something related to artificial intelligence. I'm sure most of us who are sitting here, definitely in some way or the other, we are hooked to something connected with machine learning or artificial intelligence. Say, for example, ChatGPT itself. I'm sure most of us would be using this. So it's good to use this, as our chief guest was telling here, Professor V.K. Saraswat, it's very important that we have to get along with AI, but without getting adulterated with the ill effects of AI. And the best way for that is having a kind of clear framework before you get into using these kinds of modalities. If you do not know the rules of how to use it, definitely it is just like, without knowing what is a computer system, you keep on clicking, but finally you land up somewhere, but you never know how did you land up there. The same kind of scenario is what is existing with artificial intelligence also. Let me give an example for this. Recently, I don't know how many of you have heard this story. In US, one of the student, he was acquainted with ChatGPT for a longer time, and the acquaintance is mainly to get an idea, proper plan, how he can commit suicide. All the kinds of support, whatever the ideas he wanted, he got everything from ChatGPT, and finally he committed suicide also. And the parents finally had filed a court against the OpenAI CEO, Altman. And this is a kind of serious concern which all of us need to think very deeply, and this is definitely going to bother the society in a very, very larger way for sure. Because many of us are using our mobiles as a babysitter for our kids. And this is going to be a serious concern in the near future, and it's already there. So in this context, especially some kind of framework in the name of ethics and then morality, so that we can have a safe and healthy use of technology, and a kind of training modules also. And these training modules, once it is implemented, it can be tracked and converted into a kind of long-term project also, which can be measurable. Yes, next slide. Yes, that's all I wanted to share with you all. Thank you very much. I hope all of you would definitely join hands with us for implementing all these things.
Thank you very much, brother. This is a beginning of your spiritual journey. So, yahan valedictory hum nahi keh sakte hai, valedictory session nahi hai, final session nahi hai. Lekin it's a new beginning for your onward journey. So, whatever you have understood and learned during these 3-4 days of your stay at the Brahma Kumaris campus in Gyan Sarovar, so please take it back and try to implement it in your life to make yourself better and also make the society better. Further, I would like to invite Sri Shashi Bhushan Taneja ji, who is the chairperson of today's session, the outstanding scientist, DRDO retired and former director of NMRL and Institute of Technology Management, defense materials and vehicle systems expert. 40 plus years of excellence in research, development and management with DRDO, Ministry of Defense, provided technological leadership in defense vehicles, materials and advanced systems. Former director of 2 DRDO laboratories, driving strategic projects and innovations. Project director for futuristic infantry combat vehicle, FICV, and other key defensive initiatives. Currently monitoring and fostering innovation as expert angel and professor emeritus. A visionary defense scientist, whose leadership and innovations have strengthened India's technological edge in materials, vehicles and advanced systems. Most respected Sri Bhushan Taneja ji.
Except my name, the biodata probably you have copied from some other experts of DRDO. So let me introduce myself. I'm Dr. S.B. Taneja. I'm working in mainly on the warfare and warfare analysis, warfare modeling, and unmanned air vehicles. So, not an issue. So, just I thought I'll correct myself so that it should, wrong message should not go to the audience. That definitely I'm thankful for the organizers to giving me the opportunity to stand in front of the august audience here. First of all, I'll start from where our friend is. You are the activity plan. I'm happy to know that now Spark is going to get registered. That's the what the our brother was talking about. Because many governmental organizations, if they really want to give you a fund, now there should be a formal mechanism is required. Currently, I'm sure the DRDO is funding many projects which we are taking it to the DIPR in mass and the DIPAS. But definitely, the moment it's properly registered, there will be an opportunity for government to, because this is a very important area. And other thing which actually is very close to my subject also, the spirituality in AI, what you have talked about. Now that is something very, very important now is the field, because AI is the way it is going on. My particular area in which typically I work for the warfare analysis, warfare modeling, so we actually are trying to automate everything. In defense systems also, if you see all the machines which are there, now the only issue which the defense community is thinking, the man behind the machine. That means how much autonomy you want to give to these automated vehicles, automated weapons, the kind of destruction now we have seen in the previous wars also, it's a non-contact battle now. In the sense that we, if effectively you are sitting thousands of kilometers behind, you are actually trying to address the targets. Now that is where you are, enemy is not in front of you at all. Now the person who is sitting, his any wrong decision can have a very disastrous effect. Now probably, apart from, it is not only the atomic what we are talking, many more technologies, the unmanned air vehicles. Nowadays, the way things are coming, the
manned and unmanned teaming people have been talking about. That means a convoy of the aircraft, when it will be going, it will have automated aircraft which is going, and along with that there will be a, which currently the all the manned systems are actually being. So idea is not to get into enemy territory anymore, and if you can see the unmanned aircraft, the moment we are getting into this area, what is happening, the person who is actually taking the decision, one wrong decision can have multiple effects, because now the end of the day you are having the swarms of the UAVs which can go, and probably they can give much more kind of danger what we have with the manned system. So this specialty in the AI and what you are talking about, I am sure this area which the Spark is taking, it will be a basically service to the humanity, if you ask me, if this area is taken seriously. And as I see in your action plan, this already is there. Now coming to my personal journey with the Brahm Kumaris, I am associated, in fact I am interested in actually knowing about this, and associated with the Spark Wing, and keep coming. It is the third or fourth time which I am coming here, and every time it's always a new learning in terms of how the technological, and there's always an opportunity to see many youngsters. I see many youngsters who actually are now into this area. One of my friend which I met, Mr. Professor Gyanendra, I see the youngsters who actually have now this who are working in AI, if they really want to bring spirituality, it will be a good distinct. So that is one takeaway when I go from here. I see that opportunity to network the people. This is always a byproduct of any, and obviously we come here to recharge ourselves. So effectively, if you see, we have been taught about the soul consciousness and then connecting to the God. As a science student, we always finally make a note of this thing. From the large this thing, we try to see what is the crux and what is the most generic. So in my view, that soul consciousness and then finally connecting to the Supreme, that is the crux, and beyond that everything actually. Our colleague, we were talking about that we have a two roles. You were saying that when we are doing the meditation and when we go to the market, probably I assume if you are soul conscious, this will not come. I assume that the way you interact with the other person, soul consciousness is the crux of the thing. If that is there, probably there will not be two roles, it will be single role. That's what the BKs finally, they tell us that you recharge every 1 hour. When you see that here, they remind you that you should stop yourself, whatever you are doing, think, and then proceed ahead. So that is something, probably if we really understand the basic philosophy from the Brahm Kumaris here, probably there will not be any conflict. That is my understanding of the thing. There is no conflict. Only thing is, we have to understand what actually is being preached here, because it's and nice to see very youngsters who are here, who actually. So that is the basic this thing. As far as DRDO is concerned, we are thankful to Dinesh Bhai, who actually is the ambassador. As for the DRDO interactions are concerned, he has been going motivating people. I am told that when Dr. Kalam, he visited the Brahm Kumaris here during the Baba Milan, I was told. And Baba told Dr. that time he was secretary or SA to RM. He was not president, nor he probably, nobody would have thought that he would definitely be going for that. So I am told that Baba told him that you are going to do something big. So when he came back to DRDO, he was talking to his colleague. I don't know why the Baba is telling me that you are going to do something very big. And after a few months, that his nomination was put in, and rest story obviously everybody of you know. So we are very well connected as far as the BK's thoughts are concerned, and many of our scientists. But other important aspect from the speakers I got, and I'm happy to see that we always say science and spirituality, and somebody said, reminded of, it's not spirituality and science. I think that is the crux of the thing. Any scientist firstly should be spiritual, then it should become the science, because AI, when we talk about, whatever the end of the day, we have to see who is actually making AI. Actually, we only are making AI. Finally, the man behind the AI is there. If he is spiritual, probably we can make you the AI in a more constructive way. So this was the background, but because this was a valedictory this thing, I thought I should put my thoughts in a more formal way, so that at least I can communicate whatever I wanted to say. So I'll just read through whatever my thought processes are there, because I assume that valedictory function, we should take some the takeaway from as far as the conference is concerned. So, ये जो सम्मेलन जो स्वयं इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब हम शुद्ध भावनाओं के साथ मिलते हैं तो हम पहले से ही नए युग के बीज बो रहे हैं, जो अभी इस बारे में कहा जा रहा है. सो आज का जो विषय है, इनवोकिंग द डॉन ऑफ न्यू ईरा बाय एक्सप्लोरिंग इट्स सीड्स इन द प्रेजेंट टाइम्स, ये गहन भी है और व्यवहारिक भी है. भोर अचानक नहीं आती, वह शांति से धीरे धीरे आती है और अंधकार को मिटाती है. उसी प्रकार नया युग कोई दूर का सपना नहीं है, वह यहीं और अभी हमारे कार्यों, हमारी चेतना और हमारे चुनावों में अंकित है. आज जब हम संसार को देखते हैं तो उथल पुथल के अनेक संकेत हमें दिखाई देते हैं. जलवायु का संकट है, संघर्ष और तनाव व अकेलेपन की मौन महामारी, जिसका हमारे कई स्पीकर्स ने यहां बात भी की थी. फिर भी गहराई से देखें तो समांतर धारा भी बह रही है. तो वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस ऑलवेज, जहां जागरूकता, ध्यान और शांति की चाह है. इतने सारे लोग जो यहां आए हैं, स्पेशली आए थे यंगस्टर्स जो आए हैं, तो जागरूकता तो है, ध्यान में और शांति की चाह जरूर है. तो ये एक पॉजिटिव साइड है इसकी. संकट और अवसर साथ साथ चल रहे हैं, जो संकेत करते थे मानवता एक मोड़ पर खड़ी है. जो यहां ब्रह्म कुमारी में कहा जाता है, संगम युग में खड़े हैं और यहां से हम जो है आगे जा रहे हैं. तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप देखोगे लोगों में अब ये जागरूकता है कि वो इस तरफ आना चाहते हैं. तो एक हम मोड़ पे खड़े हैं. तो हम बदलाव के युग में जी रहे हैं. टेक्नोलॉजी, खासकर AI, जिसकी बात इस कॉन्फ्रेंस में बहुत हुई है, हमारे काम, घर और सोच को बदल रहे हैं. इसमें यू कांट डिनाई एंड इट्स ए फैक्ट ऑल्सो. सो मशीन्स आर बिकमिंग फास्टर, स्मार्टर एंड मोर पावरफुल एवर बिफोर. पर एक चीज है जिसे मशीन बदल नहीं सकती, मेरा भी व्यू है एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, कि वह कि ह्यूमन स्पिरिट और ह्यूमन आत्मा को, मेरा अपना मानना है कि प्रॉब्ली वो उस लेवल तक क्या हम पहुंच पाएंगे. मैं इसमें शायद मुझे लगता है कि नहीं, फाइनली जो है मैन ओनली इज मेकिंग ऑल दीज थिंग. तो फाइनली जो स्पिरिट है उसको एम्बाइब जो है एथिकली भी मुझे लगता है हमें करना भी नहीं चाहिए. फाइनली द कंट्रोल जो है वो आत्मा के पास खुद ही रहेगा. परमात्मा जो है आत्मा को कंट्रोल करता है, आदमी ही मशीन को कंट्रोल कर रहा है. तो स्पिरिचुअलिटी हमें वह देता है जो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती. क्या चीज है जो हम देखते हैं? शांति है, मूल्य है और जीवन का उद्देश्य है. ये चीज अब मशीन का नहीं है. मशीन जो हम AI डिजाइन करते हैं, AI डिजाइनर से पूछिए, तो मशीन जो एंड ऑफ द डे उसको हम टीच करते हैं, जो डेटा देते हैं उसी को वो लर्न करता है. और ये भी नहीं पता कि वो 5 साल के बाद और क्या लर्न कर लेगा. दैट इज अगेन डेंजर इन द AI मशीन. तो यह हमें बता सकती है कि कैसे करना है, लेकिन जो है अध्यात्मी हमें बता पाएगा इसे क्यों करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मैंने अपने वॉर की भी बात की थी. जब क्यों की बात, तो मैन मशीन बिहाइंड कमांडर साथ में डिबेट होती है डिफेंस में कि क्या कितना AI हम जो है डिफेंस सिस्टम्स में लाएंगे. बिकॉज जो उसका जो स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो पर्सन के पास ही है. ही टेक्स वेदर डिसीजन इज राइट और रॉन्ग. विदाउट वैल्यूज इवन द बेस्ट टूल्स कैन बी मिसयूज विद बट विद द वैल्यूज इवन द सिंपल टूल्स कैन क्रिएट द वंडर. सो ये जो क्रक्स डेफिनेटली जो हमें सिखाया गया अध्यात्म में, शायद वो सच भी है. तो स्पिरिचुअलिटी का जो अध्ययन है उन घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिन्हें विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सकी. और मेरा अपना भी मानना है इस चीज में कि साइंस स्टडीज जो है वो मैटर्स को स्टडी कर रहा है. स्पिरिचुअलिटी जो हम बाद में कर रहे हैं कॉन्शियस, और जो है जो हम इनर वर्ल्ड की हम बात करते हैं. तो जब ऑनली थिंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब दोनों मिलते हैं नया आम, तो इफेक्टिवली हमें जो है दोनों को मिलाकर अब चलना है, समय उसका आ गया है. तो कई उदाहरण हमने सामने स्पिरिचुअलिटी में स्पष्ट है. मेरा अपना ये कुछ व्यू है कि विचार और कंपन की जो शक्ति है, जो विज्ञान मानता है कि विचार मस्तिष्क की जो है विद्युत तरंगे हैं, और लेकिन यह नहीं समझ पाया कि विचार दूर बैठे व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है. आप सभी और हमने जो है बचपन से अभी तक महसूस किया है कि मैं कुछ यहां सोच रहा हूं तो सडनली जो है दूसरी साइड में आदमी है. अब मैं कई बार ऐसा लगता है अभी आप किसी के बारे में सोच रहे हो, सडनली उसका फोन आपके पास आ जाता है. ये आप और हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है. ये कैसे होता है? अब इसका तो साइंस तो है, इसके बारे में ना तो सोच रहा है ना उसके पास कोई आंसर है. इसका मतलब है कोई ना कोई जो है जो स्पिरिचुअलिटी इस बारे में डेफिनेटली बात करती है, और उनका कहना है कि विचार कंपन है जिसकी वजह से आप दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. प्रार्थना और जो ध्यान द्वारा उपचार, यहां भी कई हमारे जो रिसर्चर्स ने बताया कि सामूहिक जो हम प्रार्थना करते हैं उससे उन्होंने देखा है कि हीलिंग बेटर हुई है इस बारे में, और इसके प्रूफ भी लोगों के जो दिए गए हैं, जो हमारे जो भाई यहाँ प्रोफेसर बिट्स से बैठे हैं बात कर रहे थे, इन्होंने भी एक अनुभव बताया था किस तरह से रिमोट हील इन्होंने अपने प्रैक्टिकली अपने सामने ये देखा हुआ है ना। इसका जो है स्पिरिचुअलिटी के अलावा आपके पास कोई आंसर है नहीं, अगर साइंस से आप देखा ना चाहोगे किस तरह से हो रहा है। तो ये ऐसे कई चीजें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, स्पिरिचुअलिटी एक मोर देन साइंस है जिसको हम जो है हो सकता है कि कुछ आने वाले सालों के बाद देखेंगे साइंस ही जो डिफरेंट थी, प्रॉब्ली ट्रूथ इज समथिंग डिफरेंट। तो जब भविष्य की जो तकनीक जो मानवता को मार्गदर्शन करेंगे, मुझे लगता है कि जो आज की जो टेक्नोलॉजी है स्पिरिचुअलिटी को, इसको हमें साथ साथ लेके चलना जरूरी होगा। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एज वी कंक्लूड आई इन्वाइट ईच ऑफ अस टू पॉज एंड मोमेंट एंड कैरी ए विजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आए हैं 3 दिन यहां पर और आई एम श्योर हमारे कई साथी जो है मल्टीपल टाइम्स भी आए होंगे, हम चाहते हैं कि ऐसा विश्व जहां भय का स्थान विश्वास ले ले, जहां आत्मा चेतना जबकि सोल कॉन्शियसनेस के प्रकाश में विभाजन जो है वो मिट जाए, जहां हम प्रकाश स्तंभ बनकर दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। मुझे लगता है अगर हम इन उद्देश्यों के साथ जाएंगे तो समाज में कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे एटलीस्ट। और यह सम्मेलन यहीं समाप्त न हो बल्कि हमारे जीवन में एक संकल्प के रूप में आगे बढ़े, उदाहरण बनके जिए और साधन बनकर सेवा करें और हर संवाद में इन दिव्य बीजों को हम सींचें। नया युग कल आएगा, वह आज से हम कल नहीं आज जो है वो हमसे और अभी से शुरू होता है अगर आप सीडिंग की बात करेंगे। इस विश्वास, इस स्पष्टता और इस सामूहिक संकल्प के साथ आइए हम सब आशा, शांति और प्रेम के दीपक बनकर आगे बढ़े। धन्यवाद। ये तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज लेके जाएं। दूसरा मेरा अपना एक पर्सनल एडवाइस है कि आप जहां जिस भी जहां रह रहे हैं साथ में बीके सेंटर्स हैं वहां जरूर जाना है। मेरा अपना पर्सनल, मैंने देखा है कि वहां आप जाते हैं मुरली सुनते हैं और वहां के लोगों से मिलते हैं तो शायद हम कुछ ज्यादा हमारा जो है अपने आप को चार्ज कर सकते हैं और समाज के लिए भी करेंगे। तो ये जरूर आप जो है अपने जाके, उसके बाद यहाँ तो अपना घर है, अपॉर्चुनिटी है, जब भी आना चाहे हम आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जब जहां भी जिस उसमें, और कई लोगों से प्रोफेसर मान सिंह या बैठे इनका भी हमने सुन के बहुत अच्छा लगा, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। एंड मैं बीके अंबिका दीदी और अलका दीदी से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हमारे को इतना अच्छा जो एनवायरमेंट दिया। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण तनेजा जी। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि आपके इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कमी रह गई, तहे दिल से मैं माफी मांगती हूँ। और आपने बहुत सुंदर बातें यहाँ कही। एज वी ऑल नो, आपने कहा कि वी आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द आयरन एंड द गोल्डन एज, हम संगम युग पर है, बीच में है। जैसे देवी देवताओं को देवी देवताओं का गुणगान जब हम करते हैं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके हम गायन करते हैं, तो ऐसा संसार भविष्य में जरूर आने वाला है। लेकिन हम सभी ऐसे बन सकते हैं, ऐसी दुनिया में जाने के लिए यहाँ से ही हमें प्रयास करना होगा, सर्व गुणों से हमें संपन्न बनना होगा। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, नरक कहीं नीचे नहीं है, इसी संसार में वो परिवर्तन होता जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसा संसार जब आएगा, क्योंकि हम ये कह सकते हम अपने अंदर वो डाउट हो सकता है कि आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं, लेकिन जितना निश्चित है कि रात के बाद दिन को आना ही है, whether you want it or not, the dawn will come. रात कितना भी लंबा हो, आप कहें कि रात बहुत अच्छा लग रहा है, दिन न आए, तो लेकिन हमारे कारण से दिन न आए वो हो नहीं सकता, तो दिन को आना ही है। Are we prepared for that? That's the question. क्योंकि ऐसा संसार जब आएगा कि उस संसार में कौन हो सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर अगर मेरे अंदर विकार है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारे नेगेटिविटीज अगर मेरे में है, विल आई बी एलिजिबल टू गो टू सच अ वर्ल्ड? बिकॉज इफ आई गो टू सच अ वर्ल्ड देन आई विल स्प्रेड नेगेटिविटी, तो मैं मुझे तो एंट्री ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संसार बहुत ब्यूटिफुल रहेगा और हर व्यक्ति वहां सर्व गुणों से संपन्न होगा। सो इफ यू वॉन्ट टू गो such a beautiful world, then you will have to start to work from today onwards, work on ourselves from today onwards. So, अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी से आपके प्रेरणादायी बोल हम सभी के बीच में रखेंगे. दो दिन में तो बहुत सेशंस में दीदी का सुना ही है, लेकिन आज के वॉलंटियर सेशन में आपके प्रेरणाएं हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी.
ओम शांति. बोलिए ओम शांति. ओम शांति. आदरणीय मंच और मेरे सभी भाई बहनों को हमारा नमन है. आज की जो सेशन, आप सब सोच रहे होंगे कि आज पूरा होगा तो पूरा हो गया, हम वापस जाएंगे. उसकी तैयारी भी चल रहा होगा, लेकिन उसके पहले आप सभी 3 दिन सुनने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए सोचे कि हम यहाँ से नया भारत लाने के लिए नई नई बातें हम क्या ले जा रहे हैं, क्या स्वयं के लिए प्लानिंग है और सारे हमारे समाज और दुनिया के लिए मेरा प्लान क्या है, ये जरूर सोचना. और वही बातें आपको ले जाने लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ. दूसरी बात, नया भारत नई दुनिया आने का निश्चित है. जैसे हमारे सुमन बहन कह रहे थे, रात के बाद दिन आना निश्चित है, लेकिन लाने वाले कौन है ये भी आपको पता है, वो हम ही हैं. लेकिन हमारे साथ ऐसा कौन सी शक्ति है जिनके बल पर, जिनके आधार पर हम ऐसे नया भारत, जिस भारत में मौल्याधारित समाज की सुदृढ़ता और हर मानव के अंदर परिपूर्णता, गुणों की, शक्तियों की, कलाओं की और संपत्ति की, तो इतना सब कुछ, ऐसी परफेक्ट दुनिया, परफेक्ट समाज, परिपूर्ण समाज वो परफेक्ट ही ला सकता है. उसके पास ही वो प्लान है. ऐसी दुनिया हम कैसे ला सकते हैं, तो जिसके लिए वो ज्ञान सागर बाप आकर के हम सब बच्चों को, वो आत्मा की फादर है, तो वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स एज आई शेयर्ड ऑलरेडी. तो स्पिरिचुअल नॉलेज, द ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी, प्राचीन भारत की प्राचीन योग, द गॉड टॉट मेडिटेशन एंड गॉड टॉट द स्पिरिचुअल नॉलेज, जो प्रलोप हो चुका था, जिसको फिर से परमात्मा आकर के हम सबके आगे जो ये ज्ञान स्पष्टता से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, और उस दुनिया में जाने के लिए बहुत सरल तरीके, सरल विधियां बता रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी कष्ट करना न पड़े, न त्याग करके कहां जंगल में ना जाना पड़े, कहीं भी नहीं. लेकिन आपके विज्ञान के अनुसार हमें एक चीज जरूर करना है, जिसमें आप सबको मालूम है, रिसर्चर्स है, तो नए बातें, नया अभ्यास, नई सोच, नए सोच के आधार से हम नई बातें जब कर्मों में, हमारे जीवन में चलते फिरते हर व्यवहार में लाएंगे, तो उसका प्रूफ जो है हमारे ब्रेन में, ब्रेन मेक्स इट्स ओन पाथवेज, तो जिसके आधार से हमें जो हर स्पिरिचुअलिटी की जो बातें हैं, विधियां हैं, उसको कर्मों में लाते हुए हमें संस्कार बनाना है, वैल्यूज के एक नया संस्कार, और सदृढ़ निरंतर की संस्कार, थोड़े समय के लिए नहीं है, सारे गुणों को या कलाओं को विशेषताओं को जो लाते हैं उसको लॉन्ग टाइम जैसे प्रैक्टिस करते हुए हर रोज आपको ये लाना चाहिए, ताकि नई दुनिया में इस दुनिया की हमारी जो भी स्वभाव संस्कार है बॉडी कॉन्शियस के, तो वो नहीं रहेगा। तो राजयोग इज नथिंग बट चेंजिंग द होल ऑफ द अप्रोच ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। जो हम देह बान में कर रहे हैं उसको कंप्लीटली डिलीट करना होगा। आई एम द स्पिरिचुअल बीइंग, द मास्टर हु इज रूलिंग द बॉडी, एंड आई एम द कोर इनेट वैल्यूज जो है, तो उसको ही, उसके आधार से ही हमारे कार्य क्षेत्र की जो भी, जिस लेवल के भी आप कार्य क्षेत्र में हैं, उसके आधार से हमें लाना है, जिससे हमारे पर्सनल जीवन भी एक कंटेंटमेंट, संतुष्टता के आधार से एक सुख शांतिमय प्रेममय जीवन, सुखमय जीवन हो जाएगा। ये बातें आप सभी जो भी मतलब आए चले गए ऐसे नहीं होवे, मेरा निवेदन है आप सभी जो भी आए हो बीच बीच में अपने सेंटर्स में जरूर जाए और कांटेक्ट जरूर रखे, और राजयोगा मेडिटेशन की जो प्रैक्टिसेस है और इसकी जो ज्ञान है सहज तरीके से, जो भाई जी भी हमें हमारे आगे शेयर कर रहे थे कैसे मैं 4 बरस से आ रहा हूँ और मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहा हूँ, सेंटर्स में जाते हैं और सारा ये राजयोग की जो बेनिफिट्स है वो अपने जीवन में ले रहे हैं, तो आप उस उद्देश्य को लेकर के जाने का मेरा नम्र निवेदन है, ताकि जो इनवोकिंग न्यू एरा, नया भारत हम सभी चाहते हैं, तो आप सभी इनवोकर्स है, तो उसके लिए हमारी बुद्धि में सीडलिंग भी तो चाहिए, क्योंकि वो छोटे पौधा नए भारत के एक दैवी समाज के वो बड़ा वटवृक्ष बने, तो उसमें आप सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत जरूरी है। और हर रीति से मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ये बातें अगर लाएंगे तो इससे हमारी समाज को और आपकी फैमिली को और दुनिया को बहुत यूजफुल होगा। इतना कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंबिका दीदी का, बहुत शॉर्ट और स्वीट, क्योंकि आप सभी 3 दिन से सुन ही रहे हैं तो दीदी को लगा होगा कि और अनुभव की अनुभव कराने की जरूरत है, तो इसीलिए जल्दी पूरा किया। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ राजयोगिनी अलका दीदी जी से हम सभी को अनुभव के तरफ लेके चले, गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा मिलन का अनुभव हम सभी को कराए। आदरणीय अलका दीदी।
ओम शांति। सभी रिलैक्स हो जाइए। एक गहरी श्वास, अब हम 3 दिन से जो सुन रहे हैं उसी को अनुभव के रूप में अपने जीवन में कुछ पल बिताएंगे। स्वयं को अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप में अनुभव कीजिए आत्मा शांत स्वरूप है। सर्व चिंताएं जिम्मेवारियां मैं अपने प्यारे पिता परमात्मा को सौंप चुकी हूं। अब मैं निश्चिंत हूं, निर्भय हूं। मुझे अपने प्यारे पिता परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देकर मुझे प्यार से कह रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आप आत्मा मेरी अति प्रिय संतान हो। मेरे सर्व खजाने, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के आप बच्चों के लिए है। आप इस खजानों के मालिक हो, अधिकारी हो। अनुभव कीजिए सारे भंडार मेरे लिए खुले हैं। कोई ताला चाबी नहीं, जितना मैं अपनी आत्मा में इसे अभी भर सकती हूं भरती चले। जो चाहिए, जितना चाहिए, जितने समय के लिए चाहिए, परमात्मा मेरा पिता मुझे दे रहा है। उस परमात्म किरणों में उस प्रकाश में मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित हो रही हूं। ये सब प्राप्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। अब मैं आत्मा शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप हूं। मन में सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं हैं। सबका भला करना सर्व को सुख और शांति का अनुभव कराना अब मेरा स्वरूप देने वाले दाता का बन रहा है। अपने कर्मों से अपने दृष्टि से मधुर बोल से सबन संपर्क से मैं सर्व आत्माओं को ये सर्व खजाने बांटने का कार्य कर रही हूं। मुझ आत्मा से सभी आत्माएं ये प्राप्ति करते हुए मुझे दिल की दुआएं दे रहे हैं। हर आत्मा मुस्कुरा रही है। मैं सभी आत्माओं को अपने प्यारे भाई बहनों को प्यारे पिता से मिला हुआ ज्ञान बांटने का आनंद ले रही हूं। जो इस परमात्म मिलन का सुख मुझे मिल रहा है इस मिलन का सुख औरों को देने के लिए तैयार हो रही हूं। प्यारे पिता मेरे पिता के साथ परम शिक्षक परम सद्गुरु भी है। पिता की पालना परम शिक्षक से मिली हुई पढ़ाई और सद्गुरु से मिली हुई श्रीमत मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। अपने मन में सब संकल्प कीजिए। इन सब प्राप्तियों को मैं आत्मा सदैव अपने साथ अपने जीवन में अनुभव करती रहूं।
ये परमात्म आशीर्वाद अनुभव कीजिए। स्वयं को एक खुश नसीब आत्मा के रूप में अनुभव कीजिए। इसी श्रेष्ठ स्मृति में हम फिर से अपने आप को इस कर्म क्षेत्र पर अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति।
अलका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुभव हम सभी को आपने कराया। दिन में एटलीस्ट एक बार एटलीस्ट दिन में एक बार आप ऐसा मेडिटेशन करेंगे तो जरूर वो आत्मा रिचार्ज हो जाएगी और सारे दिन के लिए वो फ्रेशनेस वो एनर्जी जरूर रहेगा। दिन में बीच बीच में भी करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट दिन में एक बार। और दूसरी बात है, घर में अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा जो रिचार्ज सेंटर होता है वो कौन सा रिचार्जिंग सेंटर होता है, वो अपने ब्रह्म कुमारी सेंटर जो लोकल आपके है तो वहां जरूर आप विजिट करेंगे। घर में कितना भी मेडिटेशन करेंगे लेकिन आप महसूस करते होंगे यहाँ इस हॉल में जब मेडिटेशन करते हैं तो उसका अंतर है, क्योंकि यहाँ एनर्जी बिल्ड हुआ है। तो ऐसे ही हर दिन तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन एटलीस्ट आप लोकल सेंटर में दिन हर दिन जाएं कुछ मिनटों के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर दिन नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वीक में दो दिन तो आप फिक्स करें, तो ताकि फिर वो एनर्जी पूरी तरह डिप्लीट ना हो जाए तो आप बिल्डअप कर सकते हैं इसीलिए। और नेक्स्ट साल में एक बार तो यहाँ आना है, तो ये बड़ा रिचार्जिंग सेंटर है तो तीन दिन यहाँ रिट्रीट करेंगे तो जरूर ओवरऑल बिल्डअप हो जाएगा। तो साल में एक बार जरूर यहाँ आना है, हर रोज सेंटर जाए या फिर हफ्ते में दो दिन सेंटर जाए और हर रोज घर में कुछ मिनटों के लिए आप मेडिटेशन करें। तो ये हमारा नम्र निवेदन आप सबसे रहेगा। There is a request, like Sister Amuda from Malaysia, please come up on the stage and to share your experience for a few minutes. और मंचा सीन अपने मेहमानों का अभिनंदन और अभिवादन सम्मान के द्वारा हम करेंगे। आदरणीय अंबिका दीदी और अलका दीदी से निवेदन रहेगा कि मंचा सीन अपने मेहमानों का अभिनंदन और अभिवादन। अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय संजय भाई जी से, आप आकर के वोट ऑफ थैंक्स देंगे। आप सभी संजय भाई से तो अवगत है ही है, लेकिन उनका परिचय मैं संक्षिप्त में देना चाहूंगी। ओ सॉरी अमुदा बेन।
ओम शांति। सो अगेन थैंक यू दीदी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल टॉक इन इंग्लिश। ओके सो एक्चुअली आई शुड थैंक टू बाबा टू शो दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज इन दिस वन प्लेटफॉर्म ऑल द स्पेशलिटीज ऑल द डिसिप्लिन ऑल द वेरियस डिपार्टमेंट कम टूगेदर। यू कैनॉट गेट दिस नॉलेज इन वन प्लेस I think in anywhere in the world. This is the place that it was created. So I can attend this one conference and I can see how each department, each category are thinking about this spirituality. So, and how they use the knowledge, Baba's knowledge, this spirituality in their works and how they are going to use. So, what am I going to bring? Actually, it's created a lot of idea in me how to implement in my profession, and not only in the health side, in the mental health, and also in human resources. So, this is very valuable, difficult to get, and I'm very fortunate as well as you all. Thank you.
Thank you very much, Sister Amuda. You have come all the way from Malaysia just to be with all of us and attend this conference. Thanks once again. मैं अभी संजय भाई से निवेदन करती हूँ, वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करेंगे. आप स्पार्क विंग के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर है और कोर ग्रुप मेंबर है. एंड ही हैज जॉइंड ब्रह्म कुमारीज इन द ईयर 1990 एंड सरेंडर्ड फॉर दिस कॉज इन 1993. होल्ड्स अ ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड फिलोसफी कंबाइनिंग विजडम विथ आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन. Serves as a headquarters coordinator and core group member, guiding organizational spiritual initiatives. Over 30 years of dedicated service in spreading Raj Yoga knowledge and facilitating spiritual growth. Mentor and guide to countless seekers, fostering inner transformation and self-mastery. A soul surrendered to the divine, whose life illuminates the path of Raj Yoga, inspiring hearts to awaken, transform, and radiate peace. Brahma Kumar, Sanjay Bhai.
Om Shanti. आप लोगों ने Om Shanti का जवाब नहीं दिया. आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि चार दिनों से सुन-सुन के आप एकदम थक गए हैं. थक गए हैं या रिचार्ज हो गए हैं? ज्यादा रिचार्ज होने के बाद भी ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है ना. मेडिटेशन से हमें इतनी शांति मिलती है कि कई बार हम सो भी जाते हैं मेडिटेशन में. हम देख रहे थे अलका दीदी योग करा रही थी तो कई लोग अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे थे. तो एक बार आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाएं ऑडियंस. मैं वहां से बैठे बैठे देख रहा था ये हॉल बहुत बड़ा है और संख्या आप लोगों की बहुत कम है, तो आप लोगों को देख करके एक गीत याद आ रहा था मुझे, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहां गिरा एक वहां गिरा, ना सब बिखरे हुए हैं ना. दिल तो एक ही है, हम सब शिव बाबा के दिल है ना, क्योंकि हम सब भगवान के दिल में रहते हैं. परंतु ऐसा लगता है कि आप सब रूठ करके कोई वहां बैठ गया कोई वहां, जबकि आगे तो जगह बहुत है. खैर ये तो हॉल की बात है, संसार भी ऐसे ही बिखरा हुआ है. इस संसार को अब एक करना हमारा कर्तव्य है और इसी लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारीज अपने सारे कार्यक्रम करता है और आप सब आ करके यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं. किसी भी कार्यक्रम की शोभा उसकी ऑडियंस होती है. जो ब्रह्मा बाबा थे, जो फाउंडिंग फादर इस विद्यालय के, एक बात कहते थे कि डांसर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर उसके आगे अगर ऑडियंस नहीं है, ताली बजाने वाले उसके कला को दाद देने वाले नहीं है, तो उसका उमंग भी ठंडा पड़ जाता है ना. हमारे समक्ष बहुत कुशल बड़े उम्दा वक्ता हैं, परंतु उनकी अच्छी बातें भी तब बाहर निकलती हैं जब सामने ऑडियंस चात्रक होकर के बैठती है. तो आप सब इस सम्मेलन की शोभा हैं, परमात्मा के इस घर की शोभा हैं. आपने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया है. सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ. आप सब अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये कार्यक्रम पिछले 4 दिनों से चल रहा है और हमारे बीच बहुत सारे स्पीकर्स आए और उन्होंने बहुत कुछ हमें सुनाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी उनसे। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो कुछ हमने सुना है उसमें से हम कुछ तो लेकर के यहाँ से जरूर जाएं, सब कुछ छोड़ करके यहीं ना चले जाएं, जो लिया था वापस कर दिया, हम तो बड़े ईमानदार हैं, कुछ भी आपका लेकर के जाएंगे नहीं यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ा बेईमान बनना जरूरी है, ज्यादा मत ले जाइए, एक दो बातें भी यदि अपने जीवन के लिए आप यहाँ से लेकर जाते हैं तो ये जीवन बदल जाता है। तो उन सारे वक्ताओं का हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं जो पिछले 4 दिनों से हम सबको अपने अनुभवों से नवाज रहे हैं, हमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाओं से श्रृंगार रहे हैं। तो उन सभी वक्ताओं के लिए भी एक बार जोरदार ताली। आज इस कॉन्फ्रेंस का समापन सत्र है और समापन सत्र का भी अब समापन हो रहा है और इसमें भी हमारे मंच पर बहुत सारे कुशल वक्ता बैठे हुए हैं, बहुत सारे आदरणीय सम्माननीय आत्माएं बैठी हुई हैं। हमने एक एक करके सबको सुना, सबसे पहले हमने श्री अरुण रंजन जी को सुना, अनुरंजन मिश्रा जी, आपने जो संस्था के प्रति अपना आदर, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रति जो अपना आदर व्यक्त किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि दही से मक्खन मिलता है और वो मक्खन शास्त्र का हवाला देते हुए कहा, शास्त्र क्या है, दही है और उसका मक्खन किसके पास रहता है, किसके पास रहता है, योगियों के पास रहता है, साधु संत महात्माओं के पास रहता है, हमारे पास क्या पहुंचता है, छाछ पहुंचता है ना। परंतु अब वो ऐसा नहीं रह गया है, अब हमारे पास अवसर है कि हम छाछ नहीं बल्कि हम वो पूरा दही, वो पूरा मक्खन भी ले सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी शिक्षाओं में कोई भेद नहीं किया जाता है, यहाँ पर समर्पित लोगों के लिए भी वही ज्ञान है और जो घर में रहते हैं उनके लिए भी वही ज्ञान है, जो जितना करता है उतना पाता है। तो आपने हमें अध्यात्म के ओर जाने के लिए भिन्न भिन्न ढंग से हमें प्रोत्साहित किया, उसके लिए हम श्री अरुण रंजन मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद श्री डॉक्टर श्रीमती नीलिमा कामजुला जी ने एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही संक्षेप में आपने प्रकृति को सुरक्षित रखने की बात की, समाज को एक बड़ा सुंदर आपने संदेश दिया, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीके भारती भाई, इन्होंने पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ उसका एक ब्रीफ नोट हम सबके सामने रखा, उस नोट को रखने के पीछे लक्ष्य यही है कि जो कुछ सुना है वो फिर से दिमाग में थोड़ा रिवाइज हो जाए ताकि यहां से हम कुछ लेकर के जाएं। भारती भाई जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर राम जयम भाई, उन्होंने एक एक्शन प्लान हम सबको तैयार करके सुनाया। अक्सर हम सब की आदत है, इंसान की एक आदत है, इंसान सुनता बहुत है, सुनाता भी बहुत है, चर्चाएं बहुत करता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाता है। हम सब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं परंतु ये भूल जाते हैं कि बातों से पेट नहीं भरता है, पेट तो कर्म से भरता है। ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे तो ये संसार उससे चलता है, जीवन चलता है, जीवन बेहतर बनता है। हम सब कुछ यहां से लेकर के जाएं, उसे अपने जीवन में भी शामिल करें और जो घर परिवार में हमारे बच्चे हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, उन्हें भी इससे जागरूक करें। एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही डॉक्टर राम जयम जी ने कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी. यहां पर कॉन्फ्रेंस की कॉन्फ्रेंस का अंत हो रहा है, उसका एंड हो रहा है, लेकिन आपकी जो रूहानी यात्रा है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसकी शुरुआत हो रही है. और उसके लिए तनेजा जी ने भी बहुत अच्छी तरह से आपको इंस्पायर किया. सुमन दीदी ने भी कहा कि जब आप यहां से जाएं तो आपके लोकल जो भी सेंटर्स हैं वहां जा करके आप जरूर वहां थोड़ा समय दें, इसको सीखें, और सीख करके इसे विधि पूर्वक करें तो इस योग का अपना एक अलग सुख है. दुनिया में योग और योगी जीवन को नीरस माना गया है, योग को एक नीरस विषय माना गया है. लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस योग को केवल एक महीना करके देखिए, विधि पूर्वक सीख करके करके देखिए. इस योग में इतना सुख है कि वो सुख, ये जो छोटे छोटे दुनियावी सुख हैं, उससे हमें अलग करने की ताकत रखता है. जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, जिसके पीछे इंसान बहुत सारे गलत कर्म कर रहा है, वो योग वास्तव में नीरस विषय नहीं है. ये दुनिया का सबसे सरस विषय है. जरूरत है थोड़ा सीख कर, समझ कर, थोड़ा थोड़ा रोज जीवन में इसे करना होगा. सुमन दीदी ने कहा कि कम से कम एक बार तो ये योग जरूर करें. मैं पूछता हूं, आप दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? कितनी बार खाते हैं? दो बार तो कम से खाते ही है ना, तीन बार भी खा लेते हैं. तो सुमन दीदी की बातों को आदर पूर्वक काटते हुए मैं कहूंगा कि कम से कम दो बार करें. थोड़ा सुबह करें उठते ही, और सोने से पहले थोड़ा सा परमात्मा को याद करके सोए, तो आप देखें कि ये जीवन का रंग और ढंग पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा. तो इस सुंदर इंस्पिरेशन और एक्सेड प्लान के लिए हम भ्राता राम जैम जी का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं. उसके बाद हम धन्यवाद करते हैं श्री शशिभूषण तनेजा जी का. आपने बहुत सुंदर, बहुत ही सार गर्भित, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैन मशीन को गवर्न करता है और आत्मा को कौन गवर्न करता है? कौन करता है? परमात्मा करता है ना. सपोज कर लीजिए कि किसी मशीन को पैर लगे हो और उसका जो ऑपरेटर है गवर्न करना चाहे, वो मशीन भाग जाए, उसको गवर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. हमारी स्थिति भी ऐसी है, परमात्मा हमें गवर्न करना तो चाहता है, हम भाग जाते हैं दूर, उससे दूर भागते रहते हैं. और जब तक दूर भागते रहेंगे, एक सुंदर मूर्ति का वो रूप हमें दे नहीं पाएगा. वो हमें हर पल गढ़ना चाहता है, पर उस गढ़ने के लिए उसके सानिध्य में रहना, उसकी बातें सुनना, समझना, उस पर चिंतन करना, उसे थोड़ा याद करना, ये बहुत जरूरी है. तो इस सुंदर इंस्पिरेशन के लिए मैं आदरणीय शशिभूषण तनेजा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं. भिन्न भिन्न तरीके से आपने स्पिरिचुअलिटी के इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश की. थैंक यू सो मच श्री शशिभूषण तनेजा जी. थोड़ा जोर से ताली बजाइए आप लोग. ताली भी आप लोग कंजूसी के साथ बजा रहे हैं. हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी, मुझे दीदी जी को जब भी मैं देखता हूं, मुझे एक चीज याद आती है. जब हम यज्ञ में शुरू में आए थे आज से 30-32 साल पहले, तो छोटे थे तो हमें हमारे बड़े जो भी सेवा देते थे वो हम करते थे, दिन रात करते थे, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, लेकिन कभी मेहनत महसूस नहीं हुआ. जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते गए तो हमें करने के साथ कराना भी पड़ता है. अलग अलग सेवाएं हमें बड़ों द्वारा मिलती रहती है, पर हमें लगा कि करना आसान है, परंतु कराना उतना ही कठिन है, जितना करना आसान है आप डे नाइट मेहनत कर सकते हैं, पर चार लोगों से यदि आपको कुछ कराना हो तो सिरदर्द हो जाता है ना, टेंशन हो जाता है, सबके स्वभाव अलग है, संस्कार अलग है, सबका एनर्जी लेवल अलग है, सबका एजुकेशन अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका लेवल अलग है। तो लगा कि ये कैसे, माना ये बड़ा काम है। और मैं देखता हूं अंबिका दीदी जी को कि अंबिका दीदी जी मोर देन 300 सेंटर्स इन कर्नाटका एंड सम प्लेसेस ऑफ आंध्र प्रदेश को गवर्न करती हैं, एंड सी इज मैनेजिंग मोर देन आई थिंक 800-900 डेडिकेटेड सिस्टर्स। और इतनी बड़ी टीम को संभालते हुए ऊपर से स्पार्क की सेवाओं को देखना, और इस स्पार्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें हजारों लोग लगे रहते हैं, वर्ष भर में बहुत सारे कार्यक्रम बड़े छोटे किए जाते हैं, और सबको बैठकर गवर्न करना, सबको उसकी क्षमता अनुसार, उसके स्वभाव संस्कार एनर्जी लेवल अनुसार उसको सेवा देना और कराना, ये अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं अंबिका दीदी जी का दिल से लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। हमारी अलका दीदी जी, पहले भी हमको योग कराया और आज भी सुंदर योग की अनुभूति कराई, जिसको हम रूहानी यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी करते कहते हैं ना, और ये जर्नी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आपको देखते हैं, आपका सौम्य और शीतल स्वभाव, एक सौम्य और शीतल पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। हम योगी हैं, हम अपने संस्कारों का ध्यान रखते हैं, परंतु हमारे पास रहने वाले सारे लोग तो योगी नहीं है ना, वो हर दिन हर पल हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, परंतु हर परीक्षाओं के बीच रहते, सबके बीच रहते अपनी मनः स्थिति को स्थिर रखना, परेशान न होना, हमेशा शांत और शीतल रहना, ये योग के बल से ही संभव हो सकता है। और इसी का एक सुंदर मैसेज देते हुए दीदी ने हम सबको बहुत सुंदर गाइडेड मेडिटेशन कराया, और दीदी का ये मैसेज है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो अब शुरू हो रही है उसको आप जारी रखना, और घर में जैसा सुमन दीदी ने कहा, तनेजा सर ने कहा, अंबिका दीदी ने कहा, आप सब जाने के बाद अपने जीवन में योग को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे तो जीवन का सुख बढ़ जाएगा। तो एक सुंदर गाइडेड मेडिटेशन कराने के लिए हम अलका दीदी जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी अभी कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में मलेशिया से आई हुई अमूथा बहन ने बड़ा ही संक्षेप में बड़ा ही सुंदर मैसेज हमको दिया। मैं अमूथा सिस्टर का भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार इस बहन के लिए बहुत जोर से ताली बजाइए। मैंने क्यों इनके लिए जोर से ताली बजाने के लिए कहा, क्योंकि ये बहन मलेशिया से आई है। सी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन चेंज अवर लाइफ, हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन मेक अस हैप्पी। और कहते हैं कि हमारा भारत धर्म गुरु है ना, हम भारत के लोग धर्म गुरु माने, देश हमारा धर्म गुरु माना जाता है, हम मानते हैं कि बचपन से हम धार्मिक हैं, और वो विदेश से बहन आकर के हमें धर्म का इम्पोर्टेंस समझा रही है, तो हमें समझना चाहिए, समझेंगे तो जीवन बदलेगा। इस आदर के लिए हम अमूथा सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक सुंदर मंच संचालन के लिए हम सुमन दीदी का, सुमन दीदी को आप लोग देख रहे हैं, सुमन दीदी हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहुत ही एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती हैं, आप एजुकेशन विंग से जुड़ी हुई हैं, आपके सुंदर मंच संचालन के लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें सुमन दीदी की एक बात जो है, मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अपील की, उन्होंने कहा कि मंदिर तो हर एक के घर में होता है ना, फिर भी हम जो मंदिर विशेष बने हुए वहां पूजा करने के लिए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है ऑलमोस्ट सबके घर में मंदिर होता है, फिर भी बाहर जो मंदिर बने हैं वहां जाते हैं। क्यों क्यों वहां जाते हैं? क्योंकि वहां के वातावरण में हजारों लाखों लोगों के अच्छे वाइब्रेशन शामिल होते हैं। हमारे घर में केवल हम पूजा करते हैं और वहां लाखों करोड़ों लोग पूजा करते हैं, उनके शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन, उसकी तरंगे वहां व्याप्त रहती है, केवल जाने से भी वहां ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही हमारे जो लोकल सेंटर से जहां हजारों लोग रोज आकर मेडिटेशन करते हैं, फुल्ली मेडिटेशन से वो चार्ज्ड वातावरण होता है। आप ना भी कुछ करें, कम से कम हफ्ते में दो बार जाकर वहां बैठें, तो भी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जीवन की परिस्थितियों से लड़ने की ताकत अंदर में आने लगती है। उन्होंने एक और बात कही कि आप यहां साल में कम से कम एक बार जरूर आइए। क्यों आइए यहां एक बार? क्यों उन्होंने आपको यहां आने के लिए कहा साल में एक बार जरूर आइए? क्योंकि यह आपका घर है, हाँ, ये परमात्मा का घर, आपका घर है, अपना घर है, और अपने घर में तो आना चाहिए ना। हम बाहर नौकरी करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, साल में एक दो बार तो आते हैं, आप भी साल में एक बार जरूर आए। हम दुनिया में इधर उधर घूमने जाते हैं, हम उन सब जगहों पर घूमने जाते हैं जहां से आत्मा की शक्ति और ही नष्ट होती है, यहां आने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आप ना कुछ करें, ना योग करें, ना ज्ञान सुने, सिर्फ यहां के वातावरण में रहें, यहां का शुद्ध अन्न खाएं जो पवित्र आत्माओं के हाथ से बना है, यहाँ का सुंदर स्वच्छ जल पिए, ये चार दिनों में इतनी शक्ति अंदर जमा होगी जो साल भर तक आपको चलेगी। इसलिए जीवन में ये लक्ष्य जरूर रखें कि साल में एक बार इस अपने घर में आना है और अधिकार से आना है। हम लोग सिर्फ यहाँ के रखवाले हैं, ये घर आपका है, हम तो सिर्फ आपके घर की देखभाल कर रहे हैं, तो आप सब जरूर साल में एक बार यहां आए। कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगती है ना, स्टेज पर तो कुछ लोग जो दिखते हैं उनको ही हम जानते हैं और उनको ही धन्यवाद देते हैं, परंतु वास्तव में धन्यवाद के असली पात्र तो वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह करके सारे कार्यक्रम को मूर्त रूप देते हैं। हमारा स्टेज है, लाइट है, साउंड है, वीडियो डिपार्टमेंट है, हॉल की देखरेख करने वाले जो भाई बहने हैं, किचन है, ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन है, बैक स्टेज की टीम है, एक लंबी चौड़ी टीम है जो हर पल हमारे कंफर्ट का ध्यान रखती है, हर पल हमारे आध्यात्मिक उन्नति का ख्याल रखती है, हमारे सोने के बाद सोते हैं, उठने से पहले उठते हैं। तो मैं इस टीम का भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार, इन सब के लिए भी हम ताली बजाएंगे। दो बहनों ने मिलकर के एक बहुत सुंदर पपेट शो दिखाया, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा तो बजा दीजिए ताली। एक सुंदर मैसेज दिया ना, एक छोटा सा मैसेज कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें आपको यहाँ समझने सुनने को मिलेंगी जो केवल भावना पर आधारित नहीं है लेकिन तार्किक है, तर्क संगत है। यदि हमने समझ लिया तो हमारी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें गति आ जाएगी, वो बहुत सरल हो जाएगी। तो हम उन दोनों बहनों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। लास्ट में हमारे जीवन का केंद्र बिंदु परमपिता परमात्मा शिव, जिसे हम सब प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा का हिंदी में क्या मतलब होता है? बाबा किसे कहते हैं? पिता को कहते हैं ना, बाबा यानी पिता। कहीं कहीं पर बाबा पिता के पिता को भी कहते हैं, पर हिंदी में बाबा पिता को प्यार से कहा जाता है, तो वो हमारा पिता है। हम जनरली शिव बाबा शिव शब्द नहीं यूज करते, हम बाबा ही अक्सर बोलते हैं। कोई भी बोले तो समझ जाना वो शिव बाबा के लिए बोल रहा है, जो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, हमारा आराध्य है, जो हमारे जीवन को संवारने वाला है, जिसके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। हम सब तो मानते ही हैं, हम सब केवल इंस्ट्रूमेंट हैं, कर भी वही रहा है, करा भी वही रहा है, हम बीच में एक पपेट की तरह है। वो दो पपेट उछल रहे थे ना, हम भी उछल रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो दिल से हम परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद करते हैं, और यदि भूल चूक वश कोई रह गया हो तो नाम सहित हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
संजय भाई का भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, जोरदार तालियों के द्वारा संजय भाई का भी धन्यवाद। अभी हम दो मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठ करके इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं।